विकास करते चले जा रहे हैं, तकनीकी विकास करते चले जा रहे हैं, लेकिन इस विकास की अंधाधुंध दौड़ में कहीं ना कहीं अपनी पृथ्वी और मानव जाति दोनों के साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए एक वैल्यू बेस्ड रिसर्च की आवश्यकता, ताकि हम विकास भी करें लेकिन साथ साथ अपनी धरा और साथ ही धरावासियों को हम एक सुंदर सुखद भविष्य दे सकें। आज हम इतना कंज्यूम कर रहे हैं जितना ज्यादा हम उत्पाद नहीं कर रहे हैं, जितना उपज हो रही है उससे कहीं ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? सचमुच विचारणीय बात है। और पूरे देश में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का हम पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और श्री गणेश जी अब हम सभी अनुसंधानकर्ताओं से ये चाहते हैं कि आप सब भी विघ्नहर्ता बन जाएं। तो सभी विघ्नहर्ता बनकर विश्व से जो एक विघ्न की स्थिति, संकट की स्थिति है, उसे दूर करने के लिए ही हम सब एकत्रित हुए हैं। तो सभी श्री गणेश जो यहाँ बैठे हुए हैं, एक श्री गणेश करने के लिए ही यहाँ बैठे हुए हैं कि हम एक नई शुरुआत करें, ताकि हम एक सुखद और बेहतर भविष्य की ओर चल सकें। तो बहुत ही सुंदर एक विषय लेकर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आप सभी का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जो दिल के हों खूबसूरत, ईश्वर ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जो ऐसे खूबसूरत लोग हैं वो सभी आज इस सर कॉन्फ्रेंस में आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लें, क्योंकि आप एक बेहतर भविष्य, एक सुखद भारत के लिए प्रयास करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा आज के इस सुंदर उद्घाटन सत्र के लिए, मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच पधारेंगी आदरणीय राजयोगिनी अंबिका दीदी जी, जो कि चेयरपर्सन हैं स्पार्क वीन की, आदरणीय प्रभा दीदी जो कि डायरेक्टर हैं ज्ञान सरोवर की। मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा जी को, जो कि डायरेक्टर हैं आईआईटी मंडी के। हम सब करतल ध्वनि से हमारी मंच की शोभा बढ़ाने वाले हमारे विद्वान वक्तागण, जो आज हम सबको प्रकाश देने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं, हमें एक नई दिशा की ओर ले चलने के लिए आ रहे हैं, उनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूँ श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी को, नेशनल प्रेसिडेंट अखिल भारत हिंदू महासभा। आमंत्रित करता हूँ मैं साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा जी को, वाइस चांसलर संदीप यूनिवर्सिटी। मिस्टर रवीन व्यास जी को भी हमारे बीच उपस्थित होंगे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर शेखर सिन्हा जी को, जो मेडिकल डायरेक्टर हैं जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हिसार से, हमारे बीच पधारे हैं आप। साथ ही मैं अनुरोध करता हूँ रमा कुमार श्रीकांत भाई जी से, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं स्पार्क विंग के। हम करतल ध्वनि से हमारे सभी विद्वान वक्ताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरोज बहन जी, जोनल कोऑर्डिनेटर स्पार्क दिल्ली। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अलका दीदी, जोनल कोऑर्डिनेटर स्पार्क विंग। और साथ ही आमंत्रित करता हूँ ब्रह्मा कुमार संजय भाई जी को, जो हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं हमारे स्पार्क के। मंच सज गया है, आप देख रहे हैं, और जैसे कहा कि आज सचमुच हम सब एक गहन चिंतन की ओर चलने वाले हैं, एक नई शुरुआत की ओर चलने वाले हैं, अपने अनुसंधान को एक नई दिशा देने की ओर चलने वाले हैं। क्योंकि अब तक हमने जो अपने अनुसंधान का केंद्र रखा है वो भौतिक विकास, तकनीकी विकास ही रहा है। अब अपने इस अनुसंधान के साथ मूल्य को जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि हम एक बेहतर भविष्य और बेहतर समाज की ओर चल पाएं। और उसके लिए ही आज की ये सुंदर सभा और सुंदर कॉन्फ्रेंस है। तो जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है, हम सभी हर कार्य की शुरुआत ईश्वर की सुंदर स्मृति से करते हैं। तो चलिए 3 मिनट हम सभी ईश्वर की स्मृति में बैठेंगे और हमारे बीच ईश्वरीय स्मृति का सुंदर गीत लेकर मिस्टर साईंराम एस अय्यर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं, ड्वेल वोकलिस्ट हैं, मुंबई से पधारे हैं। पूरे विश्व में लगभग आपने 2500 कंसर्ट किए हैं और आगे भी इनका कंसर्ट जारी है। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी भ्राता साईंराम एस अय्यर प्रभु स्मृति का गीत हमारे सम्मुख रखेंगे और हम सब एक सुंदर शुरुआत ईश्वर की याद के साथ करेंगे। बेहतरीन प्रस्तुति और एक खूबसूरत शुरुआत। अगर आंख बंद करके कोई सुनता तो लगता कि लता दीदी गा रही हैं। तो सचमुच ऐसे महान कलाकार जो हमारे बीच हैं और खास हमारी अभिनंदन के लिए पधारे, उनके लिए एक बार जोरदार पुनः करतल ध्वनि। याद दिला दिया उन्होंने इस गीत के माध्यम से कि ईश्वर ही सत्य हैं और वो सत्य शिव हैं। जब हम उस सत्य को जान लेंगे, उस शिव को जान लेंगे, तो मैं भी सुंदर हो जाऊंगा और ये सारी धरा भी सुंदर हो जाएगी। तो बहुत सुंदर भाव, जिस भाव को लेकर ही हम अगले पूरे 3 दिनों तक इस यात्रा में चलेंगे और उसे अनुभव करते चलेंगे कि कैसे हम सत्य को समझते चलते हैं तो जीवन सुंदर होता चलता है। सचमुच बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भैता साई राम जी को हम पुनः बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा अब अपनी बहनों से कि सुंदर बैज और गुलदस्ते के साथ, गुलदस्ते के स्थान पर आज बहुत सुंदर पौधा आज प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि हम प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो अनुरोध करता हूं मैं अपनी बहनों से कि हमारी सम्मानित मंच का बैच के माध्यम से और सुंदर जो पौधे हैं उनके माध्यम से अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें। सचमुच बात हम प्रकृति की कर रहे हैं तो प्रकृति के बहुत अप नजदीक पहुंचते चलना है। वो जो पुष्प हम तोड़कर अर्पित करते हैं वो पुष्प तो मुरझा जाते हैं, लेकिन ये जो पौधे प्रदान किए जा रहे हैं, ये पौधे एक सुंदर भविष्य की ओर इंगित करते हैं। इंगित करते हैं कि सचमुच यदि वर्तमान में सुखद बीज बोए जाएं, शक्तिशाली बीज बोए जाएं, तो भविष्य बहुत सुंदर होगा। हम अपनी माननीय जो अतिथिगण हैं उन सभी का बैजेस के माध्यम से और इस पौधे के माध्यम से सुंदर अभिनंदन करते हुए आदरणीय अंबिका दीदी जी को सुंदर ये पौधा प्रदान किया गया। हमारे भ्राता रवीन व्यास जी अहमदाबाद से हमारे बीच पधारे हुए हैं, डॉक्टर शेखर सिन्हा जी, आदरणीय सरोज बहन जी, संजय भाई जी, कितना प्यारा लग रहा है ये दृश्य। सामने सुंदर पौधे हमारे बेहतर भविष्य की ओर हम सबको ले चलने के लिए प्रेरित करते हुए, पूरी धरा को हरा भरा बनाने की प्रेरणा देते हुए, साथ ही हमारा जीवन इन्हीं पौधों की तरह बहुत सुंदर पुष्पित हो, पल्लवित हो, इसकी भी सुंदर प्रेरणा प्रदान करते हुए स्वागत की कड़ी में अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे मधुर वाणी ग्रुप को। कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी नन्ही बच्चियां सुंदर नृत्य लेकर के आप सबके सम्मुख अब पधारेंगी। कुमारी उर्वी, कुमारी उर्मी और कुमारी उवी जो अंबरनाथ महाराज से हमारे बीच पधारी हैं, उनके पैर थिरकने से रुक नहीं रहे थे कि हमारे बीच इतने पूरे भारतवर्ष से अतिथिगण पधारे हुए हैं तो हम तो डांस करेंगे और डांस करके नृत्य करके अपने अतिथियों का अभिनंदन करेंगे। तो इन प्यारी प्यारी छोटी छोटी नन्ही बच्चियों का इससे पूर्व हमारी छोटी नन्ही परियां आए हमारे बीच। ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर आदरणीय प्रभा दीदी हमारे बीच पधार रही हैं। हम जोरदार करतल फनी से अभिनंदन करते हैं आदरणीय प्रभा दीदी जी का। प्रभा दीदी जी इस पूरे ही परिसर को बहुत प्यार से संभालती हैं, जिस परिसर में आप सब पधारे हैं और अगले 3 दिनों तक आप रहेंगे। आपके पूरे ही सुख सुविधाओं का ध्यान दीदी के नेतृत्व में यहाँ रखा जाता है, न केवल बाह्य लेकिन आंतरिक सुंदर सुख सुविधाओं का। मैं बहनों से भी अनुरोध करूंगा कि आदरणीय दीदी को बैच प्रदान करके और साथ ही सुंदर पौधा जो ज्ञान सरोवर को और ज्यादा फलाएगा फूलाएगा ऐसे सुंदर पौधे से दीदी का अभिनंदन करेंगे। और साथ साथ मैं नन्ही बच्चियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आए और अपने सुंदर नृत्य के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करें। हम जोरदार तालियों से इन नन्ही बच्चियों का स्वागत करते हैं। ये नन्ही नन्ही बच्चियां ज्ञान योग का सुंदर अभ्यास भी करती हैं, राजयोग का अभ्यास करती हैं, सेवा केंद्र पर जाती हैं, ईश्वर को याद करती हैं और साथ ही अपने लौकिक स्टडी के साथ साथ आध्यात्मिक स्टडी भी करती हैं। तो हम एक बार दिल से इनका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। मैं कहने वाला था कि अपनी कद्रदानी को यूं ना छिपाइए, यदि इन छोटे बच्चों की प्रस्तुति पसंद आई हो तो जोरदार ताली बजाइए। सचमुच हमारे स्वागत के लिए इन्होंने कितना सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, कितनी तैयारी की होगी इन्होंने, हम सब समझ सकते हैं। ये छोटे बच्चों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रही हैं हमारी आदरणीय प्रभा दीदी। ये वो नन्हे फूल जिनके भविष्य के लिए ही, बात सुंदर। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। ये वो नन्हे फूल और ऐसे ही कितने मासूम नन्हे पुष्प हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। इन आशा भरी नजरों से कि हमारी ये जो मुस्कान है, हमारी ये जो खुशी है, हमारा ये जो उमंग है, इसे कायम रखने का दायित्व आपके ऊपर है। ये मुस्कान के साथ, इस नृत्य के साथ ये हमसे ये वायदा करने को भी कह गई हैं। कह नहीं पाए लेकिन इनका हृदय तो यही कह रहा होगा, और जब ये बड़े होंगे तब हमारे प्रति इनके मन में वही कृतज्ञता के भाव होंगे। गर आज हम उनके भविष्य को लेकर विचार करेंगे जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सचमुच विश्व की जो सुंदर क्या कहूं, जो स्थितियां श्रेष्ठ थीं, वो धीरे धीरे विकास के नाम पे जिस तरह से नीचे आई हैं उस पर विचार करने का गहरा वक्त है, ताकि हम सब अपने अनुसंधान को एक सुंदर दिशा प्रदान कर सकें, ऐसी दिशा जिसमें मानव का विकास, हमारी धरती का विकास और पर्यावरण का जो क्षय हो रहा है वो क्षय ना हो, उसके लिए हमारी तरफ से प्रयास। चलिए अब आपको लिए चलता हूं पुनः, विषय तो गंभीर है जिस पर हमारी चर्चा होगी, लेकिन गंभीरता के साथ साथ रमणीकता, आनंद और उत्सव के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और उसी उत्सव का एक सुंदर और प्रतीक आपके सुंदर अभिनंदन के लिए हमारे बीच मधुर वाणी ग्रुप पधार चुका है। सुंदर गीत लेकर आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारा जो मधुर वाणी ग्रुप है, आदरणीय हमारे सतीश भाई जी, हमारे नितिन भाई, हमारे हलधर भाई, हमारे बाबा राम भाई, गोविंद भाई, ये सारे इस समूह के जो हमारे गायक हैं वो गीत की रचना भी स्वयं करते हैं, धुन भी स्वयं निर्मित करते हैं और साथ ही साथ गाते तो हैं। तो ऐसे आप सब के लिए जो इन्होंने सुंदर गीत की रचना की है, उसका धुन तैयार किया है और आपके अभिनंदन के लिए पधारे हैं, तो पहले मैं उनका अभिनंदन करूंगा आप सब की ओर से। हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मधुर वाणी ग्रुप का स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं कि स्वागत गीत प्रस्तुत करें।
आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। एक बार जोरदार तालियां पीछे तक बजनी चाहिए, सब आप सबका बहुत बहुत स्वागत।
अनुसंधान कर्ताओं का सादर स्वागत है सम्मान, सादर स्वागत है सम्मान। अरावली की तपस्थली है शोध का अनुपम स्थान, अनुसंधान कर्ताओं का सादर स्वागत है सम्मान, सादर स्वागत है सम्मान।
आपकी करकल ध्वनि आपकी प्रसन्नता का तस्दीक करती है।
रे तनी रे गर सगा मगर मा पगर गसार सा, रे तनी रे गर सगा मगर मा पगर गसार सा, कितने शोध किए और करते पर ये शोध निराला है, अंतर में फिर बाह्य जगत में करता दिव्य उजाला है, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान कर रहे हैं प्रभु प्रदान, अनुसंधान कर्ताओं का सादर स्वागत है सम्मान, सादर स्वागत है सम्मान। सामाजिक सद्भाव लिए मूल्य आधारित अनुसंधान, अनुसंधान कर्ताओं का सादर स्वागत है सम्मान, सादर स्वागत है सम्मान। सामाजिक सद्भाव हो और सबके लिए शुभ भाव हो, पर्यावरण के मित्र बने शुभ चिंतक सरल स्वभाव हो, यही ज्ञान विज्ञान यही है, यही ज्ञान विज्ञान यही है, करते चले सबका कल्याण, अनुसंधान कर्ताओं का सादर स्वागत है सम्मान, सादर स्वागत है सम्मान। अरावली की तपस्थली है शोध का अनुपम स्थान, अनुसंधान कर्ताओं का सादर स्वागत है सम्मान, सादर स्वागत है सम्मान। गर सगा मगर मा पगर गसार सा, रे तनी रे गर सगा मगर मा पगर गसार सा,
ज्ञान और आध्यात्मिकता साथ चले हो राजता, जीवन में परिपूर्णता होगी जग में समरसता, ज्ञान सरोवर की लहरों में, ज्ञान सरोवर की लहरों में लहराने को है आह्वान, अनुसंधान कर्ताओं का सादर स्वागत है सम्मान, सादर स्वागत है सम्मान। सामाजिक सद्भाव लिए मूल्य आधारित अनुसंधान, अनुसंधान कर्ताओं का सादर स्वागत है सम्मान, सादर स्वागत है सम्मान, करते चले सबका कल्याण, सादर स्वागत है सम्मान, करते चले सबका कल्याण, सादर स्वागत है सम्मान, करते चले सबका कल्याण, सादर स्वागत है सम्मान।
वाह। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरवाणी ग्रुप का। कितने सुंदर शब्दों की रचना आपने की थी अनुसंधानकर्ताओं के लिए। सभी अनुसंधानकर्ता यहाँ विराजित हैं, जिनके कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व है, और उसी को लेकर आपने सुंदर शब्दों की रचना की, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हृदय से अभिनंदन किया, स्वागत किया, लेकिन स्वागत की कड़ी यहाँ पूरी नहीं हो रही है। आप सब अपने घर में पधारे हैं और लंबे समय के बाद पधारे हैं, कोई तो प्रथम बार पधारे हैं। कौन कौन है जो प्रथम बार यहाँ पधारे हैं? मैं जरा हाथ देखना चाहूंगा, दीदी भी देखना चाहेंगे, प्रथम बार। तो आप अपने घर में पधारे हैं, इसीलिए हृदय से बारंबार आ रहा है कि इतने वर्षों के बाद आप अपने घर अर्थात ईश्वर के घर पधारे हैं, तो कितना ना आपका स्वागत करें, कितनी ना आपकी खातरी करें। इसीलिए दिल बारंबार कह रहा है कि हम बार बार आपका अभिनंदन करें। प्रकृति ने भी बहुत दिल खोल के आपका स्वागत किया है, है ना, कि सचमुच ऐसे रत्न पधारे हैं आज जो मेरे लिए कुछ करने वाले हैं, प्रकृति के बारे में सोचने वाले हैं, उसके कल्याण के बारे में सोचने वाले हैं। इसलिए वो भी झूम झूम करके आपका स्वागत कर रही है। और अब वाणी से अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय राजयोगिनी अलका बहन जी को, जो कि स्पार्क महाराष्ट्र की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप कल्याण और उससे संबंधित जो सेवा केंद्र हैं उनकी संचालिका हैं। बाल्यकाल से आप विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं और लगभग 46 इयर्स से समर्पित रूप से आप सुंदर ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। गंभीरता व शांति की प्रतिमूर्ति आदरणीय अलका बहन जी से अनुरोध करता हूँ कि वाणी से अभिनंदन हमारे सभी मेहमानों का करें।
ओम शांति। इस सुंदर नुमा शाम के समय पर जहाँ इस धरा पर हम सभी कहते हैं कि जिस समय पर दीपक जलाने का सुंदर समय होता है, उस समय पर श्री लक्ष्मी और अनेक फरिश्ते हम सबको मिलने के लिए विचरण करते हैं, तो ये गायन हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन वो फरिश्ते कौन है, वो फरिश्तों की दुनिया कहाँ है? यहाँ आने के बाद आप सबको इसका बहुत ही अच्छा परिचय मिल जाएगा और मिल भी रहा है। ये ज्ञान सरोवर जहां पर हम सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, आप सब अनुभव कर रहे होंगे कि यहाँ ये जो सफेद वस्त्रधारी जो सेवाधारी है, ये सब कैसे यहाँ पर अपने आप को समर्पित करके सेवाएं कर रहे हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं कि समय के अनुसार हम सबकी मांग है कि हमें अपने आप को सब कुछ प्राप्त होते हुए भी हमें अपनों का स्नेह, अपनों का प्यार जो प्राप्त करना है, तो वे इस ज्ञान सरोवर की सुंदर भूमि पर, क्योंकि ये ज्ञान सरोवर उस परमपिता परमात्मा ने आप सब बच्चों के लिए, हम सब बच्चों के लिए निर्माण करवाया है। साथ साथ इसको सुंदर सजाने के लिए, फलीभूत करने के लिए, हम सब के लिए एक रूहानी वातावरण बनाने के लिए हमारी आदरणीय दादियां, जिन्होंने बहुत तपस्या करके इस धरती का वायुमंडल हम सब के लिए सुखदायी बनाया हुआ है। आज हम उस परमपिता परमात्मा जो हम सभी के प्यारे पिता हैं, शिक्षक हैं, सदगुरु हैं, जो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा की किरणों की बाहें बन करके इस ज्ञान सरोवर में आप सबका वो स्वागत कर रही है। इसका आपने अनुभव भी कर लिया होगा कि यहाँ वो सुख वो शांति वो आनंद वो प्रेम की लहर है, हमें बहुत सुकून दे रही है। तो ये परमात्मा की बाहों की किरणों में आप अपने आप को अनुभव कर रहे होंगे, तो आपका स्वागत उस परमात्मा ने तो कर ही लिया है। अब औपचारिक रीति से हम करने जा रहे हैं और इस ज्ञान सरोवर के अंदर हम सभी की प्यारी दीदियां जो इस ज्ञान सरोवर को बहुत सुंदर रीति से एक आनंदमय वातावरण को बनाए रखने के लिए विभिन्न तपस्या के प्रोग्राम करते रहते हैं और साथ साथ ऐसी कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है, तो इस मंच में आज हम आदरणीय दादी जी रतन मोहिनी जो इस संस्था के मुख्य प्रशासिका है, आज उनकी ब्लेसिंग अपने आप में लेते हुए दादी जी शांतिवन से हम सभी को ब्लेसिंग दे रही है। हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी जी जिन्होंने ऐसी कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने के लिए हम सबको तैयार किया हुआ है और सदैव उमंग उत्सव भराती रहती है कि सदा ऐसी कॉन्फ्रेंस ऐसे सेमिनार करते रहिए, तो दीदी जी को भी हम आज याद कर रहे हैं। दीदी जी की ब्लेसिंग भी हम सभी के साथ में है और इस सभा के अंदर विशेष मंच पर हमारी आदरणीय प्रभा दीदी जी विराजमान है। प्रभा दीदी अपने गुणों का प्रभाव, शक्तियों का प्रभाव हम सभी के ऊपर बिखार रही है और जरूर हम 3 दिन में उनके द्वारा इनका अनुभव भी करते रहेंगे। दीदी जी, इस सभा में आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ में हमारी स्पार्कविंग की चेयरपर्सन हमारी आदरणीय अंबिका दीदी जी जो इस राजयोग के विभिन्न प्रयोग सभी भाई बहनों को कराती रहती है और विशेष रिसर्च के इसमें बहुत ही इनका इंटरेस्ट है और जो जो वैज्ञानिक ऐसी रिसर्च करते हैं उनको बुलाना, उनको इस ईश्वरी कार्य के लिए उनका भी सहयोग लेना, उनकी विशेषताओं को इस विश्व कल्याण के कार्य में लगाना, ऐसी बहुत सुंदर उम्मीदों के साथ दीदी जी ऐसी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराती रहती है। हमारी दीदी जी बेंगलोर में रहती है और दीदी जी सचमुच अंबिका एक देवी के रूप से ही है जिनके अंदर वो सारी अद्भुत शक्तियों का अनुभव करते हैं। दीदी जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ में आज हमारे मंच को शोभा देने के लिए कहें या इस ज्ञान सरोवर के अंदर ये होने वाली कॉन्फ्रेंस 28वीं कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर अपने बहुत सुंदर विचारों को लेकर के आए हैं हमारे मुन्ना कुमार जी शर्मा जी जो आज के चीफ गेस्ट हैं, इनके अंदर बहुत धर्म की रक्षा करने की बहुत सारी भावनाएं भरी हुई है और उसके लिए वो अथक प्रयास करते रहते हैं, तो हम भी उन्हें कहते हैं कि धर्म का सही अर्थ हमें यहाँ परमात्मा ने बताया कि हमारी जीवन की श्रेष्ठ धारणाएं जिन धारणाओं से हम एक कार्य का निर्माण कर सकते हैं और भाई जी वो कर रहे हैं। आपका भी सभा में तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ में हमारे माननीय सम्मानीय लक्ष्मीधर जी बेहरा जी जो हम सभी के बीच में उपस्थित हैं, ये भी अपने कुशल नेतृत्व से मानव जीवन को बहुत सरल और सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। इनके बायोडाटा में मैंने पढ़ा कि ये बहुत सुंदर ऐसे साधन तैयार करते हैं कि जिसके द्वारा व्यक्ति को मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा, सुख ज्यादा मिले। जैसे एग्जाम्पल के रूप से इन्होंने बुजुर्गों के लिए जैसी चेयर तैयार की है और जो स्वचलित हो और जिसके द्वारा उनको चलने के लिए बहुत आसान हो जाए, तो ऐसी कई साधनों का, कई तकनीकों का प्रयोग करके इन्होंने मानव को सुख देने का प्रयास किया हुआ है। भाई जी, आपके बुद्धिमत्ता और तकनीकी का हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और हम सबके बीच में डॉक्टर राजेंद्र जी सिन्हा जो हम सभी के बीच नहीं पहुंचे, चाहे इनकी कुछ फ्लाइट या लेट हो गई हो। हमारे रविंद्र जी व्यास जो हमारे सभा में पहुंचे हुए हैं, आप शिक्षा सहयोग और व्यवसाय विकास के क्षेत्र में देश के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दे रहे हैं और आपकी ये विशेषताएं, आपकी ये व्यक्तिगत जीवन की कुशलता विश्व सेवा के लिए जरूर इस विश्वविद्यालय के द्वारा आगे जरूर बढ़ेगी और हम आपका सदा ही यहाँ स्वागत करते हैं कि आप अपनी इन विशेषताओं से जरूर हम सभी के साथ सदा रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर शेखर जी सिन्हा भी पहुंचे हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप डॉक्टर हैं और बहुत ही सुंदर रीति से आप अपने हॉस्पिटल के अंदर बहुत सुंदर निर्देशक का काम करते हैं और आपके द्वारा हर पेशेंट को यह अनुभव होता है कि इनके द्वारा जो गाइडेंस मिलती है या प्रेरणा मिलती है जिससे वो अपने जीवन के दुख और दर्द को अपने अंदर से जल्दी ही समाप्त हुआ अनुभव करते हैं। आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ में आज हमें बहुत सुंदर गीत सुनाया हमारे साईराम भाई जी, आपका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। आपने देखा ये दोहरी आवाज के प्रतिभा के धनी है, आज उन्होंने बहुत सुंदर अपनी प्रतिभा हम सभी के बीच में दिखाई है और ये बहुत ही खुशी से और बिल्कुल अल्प समय के अंदर तैयार होकर के आए हुए हैं। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और इसी के साथ हमारे मंच पर हमारी आदरणीय सरोज दीदी विराजमान है जो हमारे दिल्ली क्षेत्र के अंदर विशेष पार्क की सेवाओं को देखती है और दीदी जी विशेष अलग अलग कॉन्फ्रेंस आदि का आयोजन करते हुए भी अनेक ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं कि जिसके द्वारा अनेक आत्माएं इस विश्व सेवा के लिए अपनी योगदान दे सके। सरोज दीदी आपका भी इस मंच पर बहुत तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सबके बीच में हमारे सम्मानीय श्रीकांत भाई जी जो इस ज्ञान सरोवर में रहते हैं और इस पार्क विंग की यहाँ की गतिविधियां संभालते हुए भी पूरे भारत में चारों तरफ जहाँ भी पार्क के प्रोग्राम्स का आयोजन करते हैं इसमें विशेष इनका सहयोग रहता है, विशेष इनका गाइडेंस रहता है। अंबिका दीदी जी और श्रीकांत भाई जी इनके साथ हम देख रहे हैं इस पार्क की गतिविधियां बहुत ही सुंदर रीति से आगे बढ़ रही है। श्रीकांत भाई जी आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत है, स्वागत है। और इस मंच पर हम सभी का स्वागत मधुरवाणी ग्रुप ने किया, आप सभी ने देखा उन्होंने कैसे थोड़े ही समय में सुंदर गीत बनाया और हम सबके सामने प्रस्तुत किया, तो उनका भी सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं, हम भी आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप वाइस चांसलर है संदीप यूनिवर्सिटी नासिक से, आप अपने जीवन के अंदर नैतिक मूल्यों को लेकर के चल रहे हैं, बचपन से उन्होंने अपनी माँ को अपनी शिक्षक बनाया है और माँ ने दिए हुए शिक्षाओं को लेकर के वो अपने जीवन को आज तक चला रहे हैं और बहुत सुंदर बातें उन्होंने अपनी माँ की सिखाई हुई अपने नैतिक मूल्यों की बातों को धारण करते हुए एक आदर्श शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है इस मंच पर आपका। और साथ में हमारे बीच में जो स्वागत करने के लिए आई थी छोटी छोटी नन्ही सी परिया, उनका भी हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग उन बच्चों को देते हैं। साथ में हम सभी के बीच में हमारे संजय भाई जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनका भी हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। हर एक अपनी विशेषताओं से इस ईश्वरी सेवा के अंदर अपना योगदान कर रहे हैं और साथ साथ सभा में आप सभी बैठे हुए हैं, हमारे निमंत्रण पर इस सभा में आए हैं, और सभी ने अपना अमूल्य समय आकर निकाल के यहाँ पहुंचे हुए हैं। पहुंचने में आप सभी को कई प्रकार की दिक्कतें भी आई होंगी क्योंकि सीजन ऐसी चल रही है, लेकिन फिर भी आप सब पहुंच गए हैं तो आप सभी का भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हम यही कहेंगे कि इस प्रांगण के अंदर आप सभी को, आप अपनी विशेषताएं, अपने गुणों से और अपने शक्तियों से फिर से सुसज्जित होने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो आप जरूर यहाँ होने वाला सवेरे का जो सत्र होता है वो जरूर अटेंड करेंगे, जिसमें आपको बहुत सुंदर अनुभूति होंगी, योग के प्रयोग जिसमें हम अपने आप के लिए कर सकते हैं, तो जरूर आप उसका लाभ लेंगे और अपने अंदर उन गुणों को धारण करके एक अंतर जगत में अपने उन गुणों को स्थान दे करके आप अपने जीवन के अंदर बहुत उन्नति कर सकेंगे, ऐसी शुभ भावना आप सबके लिए है। ओम शांति।
सभी का हृदय से स्वागत करने वाली हमारी आदरणीय अलका बहन जी का भी हम सब बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भव कहती भारत की ये धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हम परंपरा। लेकिन केवल ये परंपरा ही नहीं है, ये हृदय के भाव हैं जिसे आप महसूस कर रहे होंगे। और जैसे दीदी ने कहा कि जो वक्त निकाल कर हम आए हैं, सचमुच मैं इस मंच से अपने अनुभव के आधार पर दावे से ये कह सकता हूं कि अगले 3 दिन आपके जीवन के यादगार दिन बनने जा रहे हैं। आपको वो अमूल्य खजाने मिलने जा रहे हैं जिनकी सचमुच हर एक को तलाश है। बाह्य जगत में ही हम तलाश करते हैं सुख की, शांति की, आनंद की, लेकिन वो बाह्य साधनों में नहीं है, वो तो अंतर जगत में है। और उसी अंतर जगत की यात्रा आप अगले 3 दिनों में करेंगे, क्योंकि जो मूल्य है वही हमें आनंद देते हैं, सुकून देते हैं। सत्य की पहचान ही हमें वो आनंद और सुकून की ओर लिए चलता है, और सचमुच उसी की ओर अब चलने की आवश्यकता है। जैसे बारंबार मैंने एक बात कही आपसे कि बाह्य जगत की बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और उसके खोज में ही हम सतत लगे हुए हैं, अब कुछ पल निकाल के हम अपने अंतर जगत की ओर चलें ताकि हम उस चीज को महसूस कर सकें जिस चीज की मिसिंग है। और जब उसके दर्शन हो जाएंगे तो सचमुच हम जो चाहते हैं अपने भविष्य के लिए, संसार के लिए, वो हमारे लिए सार्थक हो सकेगा, सहज हो सकेगा, जो आज लोगों को कठिन प्रतीत होता है। तो हम सब इस सुंदर कॉन्फ्रेंस में जो आए हैं और इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने वाला जो ब्रह्मा कुमारी इसका प्रभाग है, स्पार्क वीन स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस एंड रिसर्च सेंटर, ध्येय इसका बहुत महान है कि कैसे विज्ञान और आध्यात्म दोनों के बीच एक सेतु का निर्माण किया जाए। जितने भी महान वैज्ञानिक होकर गए या हमारे धर्म के क्षेत्र के महानुभाव होकर गए हैं, उन सभी ने इस बात को बहुत हृदय से स्वीकार किया है कि यदि हम विज्ञान और आध्यात्म दोनों को साथ लेकर चलेंगे तभी समाज और संसार को श्रेष्ठ और महान बनाया जा सकता है। और इसी उद्देश्य को लेकर ब्रह्मा कुमारी ने स्पार्क वीन का गठन किया जो इस दिशा में सतत प्रयासरत है। और इससे पूर्व कि उस वीन की जानकारी देने के लिए मैं अनुरोध करूं आदरणीय श्रीकांत भाई जी से, मैं अपनी बहनों से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच जो डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा जी जो अभी पधारे हैं उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे बैजेस के द्वारा। और साथ ही सुंदर आज जो हम देख रहे हैं एक प्यारा सा नन्हा सा पौधा जो हंसता मुस्कुराता हुआ जैसे खिलखिला रहा है और हमें भी प्रेरित कर रहा है खिलखिलाने के लिए, मुस्कुराने के लिए। तो बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा जी का जो वाइस चांसलर हैं संदीप यूनिवर्सिटी नासिक के। और अब मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय श्रीकांत भाई जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं स्पार्क विंग के, आप युवा काल से ही विद्यालय से जुड़ गए और 1997 से आपने मानवता की सेवा अर्थ अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। बहुत सारी जो रिसर्च वर्क हो रहे हैं ब्रह्मा कुमारी के स्पार्क विंग के माध्यम से आपकी देखरेख में वो होते हैं। भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी अनेक इंस्टीट्यूट हैं जिनके साथ मिलकर ब्रह्मा कुमारी का ये प्रभाग बहुत ही सुंदर कार्य कर रहा है, एक ही ध्येय कि कैसे ये सुंदर सेतु विज्ञान और अध्यात्म के बीच बने और हम एक बेहतर भविष्य का, एक बेहतर संसार का निर्माण कर सकें। तो अनुरोध करता हूं स्पार्क विंग की जानकारी के लिए आदरणीय श्रीकांत भाई जी से।
ओम शांति। इस सुंदर सभा देखते हुए मुझे एक संकल्प आ रहा है, अगर सभी सहयोग दे। हमें परमात्मा कहते हैं कि जब परमात्म प्रेमियों की बच्चियों की संगठन हो, कुछ सेकेंड्स के लिए अगर हम संसार के लिए शुभ संकल्प करते हैं तो हम सभी परमात्म प्रेमी बच्चों की शुभ संकल्प की वाइब्रेशन ये ऑडिटोरियम से पूरे संसार में फैलेगा। अगर आप सभी पसंद करते हैं, सभी 30 सेकंड के लिए साइलेंस होंगे और 3 शुभ संकल्प करेंगे। सबका भला हो, सभी सुखी हो, विश्व में सच्ची सच्ची शांति की स्थापना हो। 30 सेकंड के लिए आप चाहे आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड हम साइलेंस में एक शुभ संकल्प की लहर पूरे संसार में फैलाते हैं। शुक्रिया। सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित हमारे सभी अतिथि, मैं 2-3 बात आपके सम्मुख रखना चाहूंगा कि जो स्पार्क विंग, इसकी पृष्ठभूमि के पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है। मुझे याद आता है कि तब तो मैं ब्रह्मा कुमारी इस ज्ञान में नहीं आया था, लेकिन मुझे पढ़ने को मिला 5 मार्च 1984, एक नोबेल लॉरिएट फिजिसिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट ब्रायन जोसेफसन जब प्रभु पिता से मिल रहे थे, परमात्मा उनको एक सुंदर संदेश दिया कि विज्ञान जगत की आप जो भी उन्नति कर रहे हो, अगर उसमें साइलेंस की शक्ति की समावेश हो, साइंस और साइलेंस दोनों का मिलन हो और इस संसार में सच्ची शांति की स्थापना हो सकती है। और जिस तरीके से विज्ञान आगे बढ़ रहा है, आज हम उस युग में हैं जहां इंसान की मेहनत को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कॉन्सेप्ट के डेवलप हुआ है, रोबोटिक साइंस और कई प्रकार की हम टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज जब हम सभी देखते हैं, इस बात को खोजते हैं, विकास के साथ साथ उसकी जो समृद्धि, उसको फील करने के जो चाहिए, उसकी हम सभी कमी महसूस करते हैं। जो संस्था की तरफ से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की जो संस्थापक दादा लेखराज के द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ये संदेश संसार को दिया, और उसी के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी जी अपनी सेवाएं पूरे समाज में 20 वर्गों में 20 विंग्स के माध्यम सेवा कर रही है। उसमें स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस रिसोर्स सेंटर एक ऐसा वर्ग है जो हमें ये जिम्मेदारी दी गई है, जो समाज के प्रभुत्व व्यक्तित्व हैं, साइंस और साइंटिफिक कम्युनिटी है, रिसर्च करने वाले जो व्यक्तित्व हैं, उन तक परमात्मा संदेश पहुंचाने का। जो स्पार्क 1995 से कार्य कर रही है, और इसके अंतर्गत हम लोग मिलकर के आप जैसे इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, कई संस्थान के वैज्ञानिक रिसर्चर्स प्रोफेसर हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं, और जैसे हम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं इसके माध्यम से हम आप सबकी सुझाव, आप सबकी जो भी हमें मिलते हैं आपकी स्पीच के माध्यम से कुछ कॉन्सेप्चुअल जानकारी, हम उसको लेकर के एक रिसर्च की प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं। जो स्पार्क को यही कार्य दिया गया है कि हम रिसर्च करके आध्यात्मिक और राजयोग ये दोनों का आज इस समय जब हम बहुत डेवलप करते जा रहे हैं इसकी कितनी आवश्यकता है उसको साइंटिफिक तरीके से दुनिया को बताने के लिए। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, ये जो स्पार्क विंग बना है इसकी जो फाउंडिंग स्टोन जिन्होंने डाला वो हम लोगों की तरह उतना साइंटिफिक या यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए पीएचडी नहीं है, लेकिन उन्हीं की सोच, उन्हीं की ब्लेसिंग्स, उनकी गाइडेंस से ये डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ। क्योंकि मैं शुरू से ही डिपार्टमेंट में हूँ, हम जो शुरुआत किया था हम सोच रहे थे क्या हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे बीच में आकर के अपनी बात रख सकते हैं। और मुझे याद आता है हमारे दादी प्रकाशमणि जो संस्था की मुख्य प्रशासिका थी, उन्होंने एक बात कहा था कि अगर हम अपनी बात को सही ढंग से अच्छे सोच के साथ रख सकेंगे तो हम निश्चित रूप से दुनिया के जो प्रभुत्व व्यक्तित्व हैं उनको हम अपने पास ला करके एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। जिस कंसेप्ट लेकर के 1995 से स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस रिसर्च सेंटर अपनी सेवाएं दे रही है और इसके अंतर्गत कई रिसर्च एक्टिविटीज होते हैं, आज हमसे मिलकर के भारत के कई ऐसे प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम मिलकर कार्य करते हैं एक ही बात पर कि इस समय मनुष्य जीवन में वो कैसे भी विकास करे भौतिकता की, लेकिन उसकी आवश्यकता है आध्यात्मिक और योग की, जिसकी संदेश हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देते हैं। और कॉन्फ्रेंस के बाद आप जैसे व्यक्ति तो जो हमें सहयोग देते हैं रिसर्च करने के लिए, इस डिपार्टमेंट का हो या इस विंग के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं, हम आशा करते हैं इस कॉन्फ्रेंस की एंड में आप हमें जो इस सभा में उपस्थित हैं आप लाइक माइंडेड हैं, स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च को हम आगे बढ़ाने के लिए आप हमें मदद कर सकते हैं, हम आपको इनवाइट करते हैं हम मिलकर इस पर बात करें और आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत भाई जी। राजयोग के माध्यम से जो योग आध्यात्म का विषय है उस राजयोग के ऐसे सुंदर गहनतम प्रयोग हो रहे जिन प्रयोगों के माध्यम से शारीरिक मानसिक व्याधियां दूर हो रही है, सचमुच एक रिसर्च का ही विषय है, अनुसंधान का विषय है हम सबके लिए कि किस प्रकार आज जो मानसिक व्याधियां, शारीरिक व्याधियां या अन्य समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, क्या आध्यात्म उनका हल हो सकता है। और इस दिशा में स्पार्क बहुत ही सुंदर और ठोस प्रयास कर रहा है और उसके बहुत सुंदर सुंदर रिजल्ट हैं जिन्हें आने वाले 3 दिनों में आप देखेंगे भी सुनेंगे भी, जो आपको प्रेरित करेगा कि सचमुच अब इसकी कितनी कितनी आवश्यकता है। इस कॉन्फ्रेंस में हम और क्या क्या करने जा रहे हैं, किस उद्देश्य से आप यहां उपस्थित हैं और क्यों ब्रह्मा कुमारीज ने, स्पार्क विंग ने आपको यहां आमंत्रित किया है, उसकी सुंदर रूपरेखा, उस लक्ष्य और उद्देश्य को रखने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय राजयोगिनी अंबिका दीदी जी को, जो कि स्पार्क विंग की चेयरपर्सन हैं। आपने साइंस में अपना ग्रेजुएशन पूरा करते ही अपना जीवन ईश्वरीय विश्वविद्यालय को समर्पित कर दिया और तब से 49 ईयर्स से सतत आप मानवता की सेवा में लगी हुई हैं। आप कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के लगभग 300 सेवा केंद्र हैं जिनका कुशल संचालन करती हैं। आपका जीवन सब हम सब के लिए प्रेरणा का एक सुंदर स्रोत है, पुंज है। तो अनुरोध करता हूं आदरणीय अंबिका दीदी जी से कि हम सबको इस कॉन्फ्रेंस के लक्ष्य और उद्देश्य से अवगत कराएं। आदरणीय दीदी।
ओम शांति। हमारे परम आदरणीय दीदी जी और हमारे आदरणीय मंच और मेरे सब आदरणीय भाई बहनों प्रति मेरा नमन है। आज आप सबको देखते हुए मुझे हम सबके प्राण प्यारे बाप दादा अर्थात भगवान के महावाक्य जो 1970 में आप सबको आवाहन किया था, परमात्मा ने ये कहा था मेरे वो बच्चे आएंगे, विज्ञानी बच्चे, जो सारी मानवता में बहुत बड़ी परिवर्तन लाएंगे। अपने संशोधन द्वारा जो कोई समस्याएं हैं उनके हल जो है परमात्म शक्तियों द्वारा अर्थात स्पिरिचुअल पावर्स और वैल्यूज जो है उसके आधार पर वो सृष्टि की समस्याओं को समाप्त करेंगे। आज जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने ये जो टॉपिक रखा है, आप सोच रहे होंगे हमें इसमें क्या करना है, जो वैल्यू बेस्ड रिसर्च फॉर इकोलॉजिकल एंड सोशल हार्मनी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कईयों का विचार अब चलता होगा, लेकिन इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। रिसर्च माना जो था अभी वो नहीं है, फिर से आपको सर्च करना है उन वैल्यूज को, उन शक्तियों को, उन वर्चुस को जिसके आधार से हम सारी धरा पर जो पर्यावरण की जो कोई समस्याएं हैं, इकोलॉजिकल जिसमें सारी प्लांट्स सारी भूमि के अंदर जितने भी पशु पक्षी प्राणी लिविंग एंड नॉन लिविंग ये सब की जो एक साथ चलते हुए एक बैलेंस रखते हुए इनकी हार्मनी से सोशल हार्मनी रहता था, या दोनों इंटरकनेक्टेड है जो सोशल जो सिस्टम है जिसके अंदर सारे मानवता एक साथ एक दूसरे को समझते हुए एक दो के प्यार में एक दो को आगे बढ़ाते हुए रेस्पेक्ट से केयरिंग द शेयरिंग सदा जनरस एक दूसरे के लिए और सदा कंसर्न्ड कंपैशन काइंडनेस उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी जो शुभ भावनाएं है इन सब के आधार से मानवता कोई भी क्लैश बिगर कशमा कशम के बिगर मिसअंडरस्टैंडिंग के बिगर स्वार्थ के बिगर चल सके। अगर ये दोनों साथ साथ चलता है तभी हमारी ये धरा पर मानवता या पशु पक्षी प्राणी इकोलॉजिकल दोनों सिस्टम हार्मनी में विथ बैलेंस ये चल सकता है। अदरवाइज द क्राइसिस ऑफ द होल ह्यूमैनिटी विद एकोलॉजी विल बी डेफिनेट, वो आप सब जानते हो। अभी जो कुछ भी इम्बैलेंसेस है उसका सारा कारण यहां मानव जो बुद्धिजीवी है मानव मनुष्यात्माओं को परमात्मा ने विशेष जो बुद्धि की शक्ति दिया है वो प्राणी वर्ग को नहीं है, लेकिन मानवता की जो सीमाएं हैं जो वैल्यूज है ह्यूमन वैल्यूज है जो मॉरल वैल्यूज है एथिकल वैल्यूज है स्पिरिचुअल वैल्यूज है ये जो वैल्यू सिस्टम है मानव जीवन में वो धीरे धीरे जो कम होते होते अभी ना के बराबर हो चुका है। इसमें आप सब अनुभव करते हो स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। जिसके अंदर बहुत सारी खशमखशा ऐसा है जो स्वार्थ के कारण, कई बातें मैं यहाँ बहुत सारी उदाहरण दे सकती हूँ, इसमें एक मैं आप सबके आगे जो चली हुई बातें हैं वो मैं आपके आगे रख सकती हूँ। ये 3-4 बरस एक ब्राह्मी के एक पौधे के सारे बेनिफिट्स पर पीएचडी लेने के लिए एक बच्ची ने बहुत सारी मेहनत करके बहुत सुंदर उसका रिजल्ट निकाला, लेकिन उसका फाइनल जब आना था बात, तभी उनके ऊपर वालों ने वो सारा पेपर्स लेकर के अपने नाम कर दिया, जिसके बाद उनको 4 बरस स्ट्रगल करना पड़ा। दैट शी इज द ओनर ऑफ द होल रिसर्च। तो ऐसे कई बातें हैं, और बेंगलुरु में कई यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा एमओयू चल रहा है, माना वैल्यूज के कमी के कारण। सी, उस बच्चे को अगर वो सपोर्ट देते, गुड विशेस देते, करेज देते, आप और आगे बढ़ो और आगे करो, उनसे बहुत सारी बातें और बड़े बड़े रूप में कई बातों की रिसर्च हो सकता था, जो समाज को बहुत सारी प्राप्तियां हो सकता था। और दूसरी जो अभी नया जो समस्या निकली है, जो वहां की प्रोफेसर आके हमारे से बात करते हैं, जो हम लोग वहां वैल्यूज को सिखाते हुए वैल्यू सिस्टम से क्या जीवन में परिवर्तन आता है, उस बात को देखते हुए अभी बड़ी समस्या क्या है, जब तक वो डिग्रीज लेते हैं बच्चे आपस में बहुत प्यार प्रेम से जो कुछ भी एक दूसरे को पता है वो सारा शेयर करते हैं, साथ चलते हैं। ग्रेजुअली जब वो पढ़ाई पूरा करके जब डिग्री पूरा होती है, वहां प्रोफेशन के लिए अपनी अपनी रास्ता, अपनी अपनी सीक्रेसी जब मेंटेन करते हैं, एक दूसरे से ओपन माइंड, दिल खुला नहीं है, अंदर बाहर स्पष्ट नहीं है, जिसको भगवान सरलता कहते हैं, तो सदा सरलता के पीछे हर एक को आगे बढ़ाने का एक जनरस फीलिंग्स जो होता है, उदारता, वो जब नहीं होती है तो एक दो के दुश्मन बन जाते हैं। फिर पावर जो खिंचाव जो होती है आपस में, जिस कारण बहुत सारी उसका प्रभाव उसके ऑर्गेनाइजेशन पर है। सी, ह्यूमन सिस्टम, सोशल सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशंस भी आती है, हमारी कल्चर आती है, हमारा जो जीवन शैली है, हमारा खान पान रहन सहन, सारी बातें आ जाती है। जो हम सब खाने के लिए किसी और प्राणियों का उनका फीलिंग है, उनकी इमोशंस है, हम कुछ नहीं देखते हैं, उसको मारो खा लो बस। लेकिन अभी की रिसर्च प्रमाण आप सबको मालूम हो कि जब प्राणी को ले जाते हैं उसको खत्म करने लिए, उसमें जो डर हो, उसके जो फीलिंग्स है, मैं मर जाऊंगा, जिस कारण उसके ब्रेन से सारा स्टीरॉइड्स निकलता है, जो वो सारा जो खाते हैं वो सारा इट इज ऑल द पॉइजन है, वन वे विच किल्स आवर सेल्स। तो ये सारी बातें, माना अपने लिए हम इकोलॉजिकल सिस्टम को खत्म करें, या हमारी प्रकाशमणि दादी थी, हमको ओम शांति भवन, आप बाद में देखेंगे पांडव भवन जब बनना था, तो वहां जब स्पिरिचुअलिटी होती है, कुछ वैल्यूज होती है, तो जिसमें हम इकोलॉजी के साथ हम कैसे, हमको श्वास लेने लिए प्लांट्स चाहिए और पीने लिए पानी चाहिए, उसमें हमारे प्लांटेशंस नहीं है तो जो बरसात आती है उसके रूट से जो अंदर पानी जाना चाहिए, जो नीचे की लेवल पानी का लेवल सदा मेंटेन हो, आजकल वो सारा खत्म है, क्योंकि डिप्लीशन ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इज गोइंग गोइंग गोइंग। जब अभी बेंगलुरु में भी 1,500-2,000 डाउन फीट जाने से भी, बोर होने से भी पानी नहीं है। वाई? कारण इतना ही है कि हम सिर्फ अपना सोचते हैं, लेकिन हम सारी मानवता को, सारी समाज को, सारी सृष्टि की जो बैलेंस है उसके प्रति हमारा कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई विचार नहीं है। वही छोटी सी बात है, हमारी दादी को वो जोड़ा बड़ा करना था, तो उन्होंने पहले सोचा जहां जहां जो पौधा है, जो भी बड़े बड़े ट्री से, उसको हम नहीं निकालेंगे, जो जगह सिर्फ पत्थर है उसको निकाल करके उस सिस्टम को बैलेंस करना है, उसका सोच करके, उसका विचार करके, अगर एक दो ट्री को काटना भी पड़ा उसके बदले 10 पौधा हम लगाएंगे, उसको बड़ा करेंगे। हर बात में उन्होंने एकालाजी को सोचते हुए सारा काम किया। तो हमारी भाव ये है इस कॉन्फ्रेंस में आप सबको बुलाने का कि आप जो कुछ भी करें लेकिन उसका बैलेंस में, उस इन्वेंशंस में आप हर एक मानव जीवन में उसका असर क्या है, हर एक मानव उससे खुश है, हर एक मानव की जिंदगी अच्छा है, वो आगे बढ़ सकता है, उसका जो सुख है, उसका जो शांति है, उसका जो सुकून है, वो ठीक हो सकता है इसी इन्वेंशन से, जिसके आधार से, चाहे वो इकोलॉजिकली के लिए भी, प्लांट्स के लिए, एनवायरमेंटल के लिए, जो कोई बातें हो वो सब के लिए इज इट पॉजिटिव। तो भाई ने ये की बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, मुझे लास्ट 15 दिन पहले एक भाई आया, सीओ था, उसने बहुत बड़ा गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा दीदी एआई के कारण हम हर रोज 50 लोगों को हमारी कंपनी से निकाल रहे हैं। मैंने कोला एक छोटी सी मिशन के कारण आप 50 लोगों को निकाल दो, उनका जिंदगी का क्या है, उनका बच्चों का क्या, उनके माँ बाप का क्या, उनका कितना उसको सोच, उनका डिप्रेशन, उनकी समस्याएं, वो जो द मेंटल पोल्यूशन, द इमोशनल फीलिंग्स, द इमोशनल डैमेज उनका जो होता है, उसका असर वातावरण पर, उसका असर जो एटमॉस्फेयर पर जो वाइब्रेशन फैलता है, वो क्या कर सकता है, इट विल डैमेज द होल थिंग। क्योंकि हमारे प्लांटेशंस हो, हमारी लिविंग और नॉन लिविंग हो, हमारी जो धरती माँ हो, ये सब का आधार है हमारा जो संकल्पों से तरंगे निकलती है, उसका असर हमारी जो ट्रिलियन मिलियन सेल्स है उस पर ही नहीं, लेकिन हमारी सारी वायुमंडल पर उसका असर होता है। उनका जो दुख है, उनका जो अशांति है, उनका जो डिप्रेशन है, कई तो कहते हैं दीदी अभी खत्म हो गया मेरा जीवन, मैं सुइसाइड कर लूं, तो हम क्या जवाब देवे ऐसे को। और बड़े 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 पोजीशन वाले आज ये स्थिति पर है, तो ये ठीक है, इसको कहे हम तो बहुत अच्छा, बड़े बड़े ऊंचे उड़ रहे हैं, हम सूरज तक भी पहुंच रहे हैं, मंगल तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन दुनिया में सारा संबंधों का क्या बातें हैं। एक ही घर में एक दो का दिल नहीं मिल रहा है, एक दो से प्यार से आंखें मिला के बात नहीं कर रहे हैं, और मोबाइल आकर के ऐसे खत्म कर दिया सोशल सिस्टम को। बाजू में बैठे कहेंगे कैन यू कम फॉर डिनर, कैन यू कम फॉर लंच। आपस में पहले जो माँ प्यार से कहती बच्चे आ जाओ हम सब मिलके खाएंगे, मिलके रहेंगे, तो सोशल सिस्टम कहाँ है? वी आर टूवर्ड्स द क्राइसिस बिकॉज द वैल्यू क्राइसिस इज देयर, दैट बैलेंस, दैट हार्मनी इज नॉट देयर बिटवीन एन इंडिविजुअल्स। एक दो को ईर्ष्यावश, द्वेषवश, एक दो को हम सहन नहीं कर सकते हैं, वो जो अपनापन था हर एक को, पहले एक गांव में सरपंच समझता था ये सारा मेरा परिवार है, हर एक का जो समस्या है वो मेरी समस्या है, मैं सबका हल करूं, सब सुखी रहे, तो ऐसे हम हर एक का माना सोशल सिस्टम के लिए हमारे जीवन में सुख शांति प्रेम आनंद, उसके साथ साथ एक उदारता, हर एक के लिए एक विश्वास, उतना ही नहीं हर एक को आगे बढ़ाने की, हर एक को हिम्मत देके, अगर दिल शिकस्त भी है उसको हम ये कहे आप बहुत कुछ कर सकते हो, बढ़ो आगे बढ़ो, यू स्ट्रेंथन देयर माइंड देयर इमोशंस। तो ये जो काम करना है उसके लिए आपको इन वैल्यूज पर, स्पिरिचुअल पावर्स पर, मेडिटेशन पावर्स पर यू हैव टू हैव ए रिसर्च. यू हैव टू गो अगेन टू द एंशियंट सिस्टम, जहां हमारी धरती, हमारी जो इकोलॉजिकल सिस्टम था, हमारी जो जीवन शैली था, सामाजिक सिस्टम था, जो हार्मनी और बैलेंस के आधार पर चलता था, उस पर आप सब रिसर्च करके, भगवान जो क्रिएटर है, डायरेक्टर है, यू क्रिएट इन सच ए वे, यू ब्रिंग सच ए वे द वैल्यूज, यू मेक ए फार्मूलाज इन सच ए वैल्यूज, वैल्यू बेस्ड फार्मूलाज, जहां आप डायरेक्ट करो समाज को, अगर ये आप करेंगे आपका जीवन शैली अच्छा होगा. और इकोलॉजिकली देखो, हमारी धरती माँ की जो साइल एक खत्म हो गया, फर्टिलाइजर हम आगे पीछे सोचा ही नहीं, जो जो आए जल्दी जल्दी आ जाएगा, उग जाएगा, सारा डाल दिया, अभी धरती खत्म हो गई. धरती के अंदर जो जीवाणु था, छोटी छोटी जो ऑर्गेनिजम्स थे, वो सब मर गए. जो साइल को और ही फर्टिलाइज करता था, वही ऑर्गेनिज्म की जरूरत थी, वो सब फर्टिलाइजेशन के कारण, केमिकल्स के कारण सब खत्म है. जो हम उग रहे हैं, खा रहे हैं, और सारा ही सारा कैंसर ही कैंसर आ रहा है, गनाए नए रोग आ रहे हैं. इसलिए प्लीज ब्रह्मा कुमारी, मेरा ये रिक्वेस्ट है, दिल का परमात्मा बाप के तरफ से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सब कुछ नया सोचे, जो अच्छा सोचे, जो आपका स्वार्थ भरा हुआ ना हो, सिर्फ आप देश को सोचे, समाज को सोचे, अपने परिवार, विश्व मेरा परिवार है उसको सोचे, उसको सोचते हुए आप कुछ नया इन्वेंशंस लाए, जो हम अपनी धरती माँ को, इकोलॉजिकल सिस्टम की बैलेंस को हम बचा सके, हमारे आगे की पीढ़ियां सुखी और शांति से जीवन जी सके. थैंक यू. ओम शांति.
हृदय के भाव किस किस के हृदय तक पहुंचे? हृदय के भाव एक ऐसा करुण भाव जिसमें मातृत्व छलक रहा था. एक माँ ही सोच सकती है कि मेरे सभी बच्चे सुखी हों, और ये मातृत्व की भावना ईश्वर ने दीदी के हृदय में भरा है. और ये विंग इसी लक्ष्य से, ब्रह्मा कुमारी इसी लक्ष्य से पिछले 88 ईयर्स से कार्य कर रहे हैं कि कैसे हृदय में वो करुणा, वो प्रेम, वो अपनत्व, वो परिवार की भावना पैदा हो जाए, कि हम सब एक होकर एक दूसरे के लिए सोचें, एक दूसरे के लिए स्नेह और सम्मान का भाव पैदा हो, और जो वो सुधैव कुटुंबकम की भावना है वो पुनः साकार हो. इसीलिए इकोलॉजिकल सिस्टम की बात हो, सोशल हार्मनी की बात हो, उन सब की गहन चर्चा और चिंतन हम सब मिलके करेंगे, हृदय से करेंगे. ये पौधा भी इसीलिए अर्पित किया गया. जो बैग आपको दिया गया है, देखा आपने, वो जूट का बैग है, वो भी हमारी प्रकृति के संरक्षण को दर्शाता हुआ और इस ओर चलने के लिए आपको प्रेरित करते हुए बनाया गया है. और दीदी मूल्यों की बात कह रहे थे, आप सब VIPs हैं अपने अपने क्षेत्र के, अब एक VIP और बन के जाएं, वैल्यूज इन पर्सनालिटी. मैं अपने व्यक्तित्व में वैल्यूज को लाता चलूं, ताकि मेरे आसपास मूल्य पनपे और पूरा ही विश्व मूल्यवान हो जाए. तो आइए इसी सुंदर दिशा की ओर चलते हैं, दीप प्रज्वलन के साथ. सचमुच दीप हमें प्रेरित करता है अंधकार से प्रकाश की ओर चलने के लिए. तो हम सब मिलकर सुंदर मन के भाव, आशा के दीप प्रज्वलित करेंगे कि जो इस मंच पर आज हम सुन रहे हैं, जिस सुंदर उद्देश्य से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम सब उसकी ओर मिलकर बढ़ेंगे. तो मैं दीप प्रज्वलन के लिए सम्मानित मंच को आमंत्रित करूंगा कि वो सामने आए दीप प्रज्वलन के लिए, और साथ ही हमारे कुछ अतिथियों को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वो भी मंच पर आएंगे, दीप प्रज्वलन में शरीक होंगे. और आप सब भी अपने अपने स्थानों पर अपने मोबाइल के टॉर्च के साथ शामिल होंगे इस सुंदर प्रतिज्ञा में, इस सुंदर संकल्प में कि हम एक नई दिशा की ओर, प्रकाश की ओर चलेंगे. आमंत्रित करता हूँ सम्मानित मंच को सामने आने के लिए. साथ ही आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी, मिसेज प्रज्ञा पारिक जी, डॉक्टर साईनाथ बैरागी जी, डॉक्टर सिद्धि विनायक बर्वे जी, मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ प्लीज आप मंच पर आएंगे, श्री निशांत कुमार जी, डॉक्टर अशोक मेहता जी, श्रीनिवास जी साइंटिस्ट जी, डॉक्टर रवि के धर जी, तपेश सिन्हा जी, डॉक्टर तुलिका सेठ जी, डॉक्टर अशोक पुरोहित जी, प्रोफेसर डॉक्टर राजीव श्रीवास्तवा जी, डॉक्टर जी एस पोपली जी, डॉक्टर सी बी मिश्रा, मधुसूदन पाल जी, डॉक्टर सुप्रतिम राय, डॉक्टर देवदत्त रत्न जी, डॉक्टर अरुण प्रताप, प्रोफेसर डॉक्टर ज्योत्सना सिन्हा जी, श्री आलोक कुमार जी, डॉक्टर एस के द्विवेदी जी, प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेश चंद्र जी, अमित कुमार सोनी जी, डॉक्टर कांतिलाल नागरे जी, राजयोगी बी के बालाकिशोर भाई, सुशील चंद्र जी और डॉक्टर रामजीम भाई प्लीज सभी मंच पर आएंगे। डॉक्टर प्रवेश पांड्या जी, आप सभी प्लीज अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, मेरा अनुरोध रहेगा, और अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लें और उसे ऊपर करेंगे वेव करते हुए, बिकॉज हम सब एक नई दिशा की ओर एक नए संकल्प के साथ चल रहे हैं। ये दीप प्रज्वलन हम सबके लिए एक सुंदर शुरुआत। को प्रकाशित करता हुआ, हमारे मन को प्रकाशित करता हुआ, हमारे संकल्प को शक्तिशाली बनाता हुआ कि हम सब एक नई ऊर्जा, एक नए प्रकाश, एक नई सोच के साथ यहाँ से जाएंगे, और जो विश्वास हमारे अंदर जागा है, जो नया संकल्प हमारे अंदर जागा है कि हम समाज और विश्व के लिए कुछ करेंगे, उसे सार्थक श्रेष्ठ बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे, सचमुच ये विश्वास पूरे विश्व को प्रकाशित करेगा। और ये दीप हमारे अंदर वही भाव जागृत करता हुआ, क्योंकि दीपक दूसरों से नहीं जलता बल्कि दूसरों के लिए जलता है। अब हमें दूसरों से नहीं जलना है बल्कि दूसरों के लिए जलना है, और जलकर समाज को, संसार को प्रकाश देना है, शांति का, शक्ति का, प्रेम का, अपनत्व का, यही इस दीप प्रज्वलन का भाव है और यही इसकी सुंदर सार्थकता है। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूं आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा जी की ओर। आप डायरेक्टर हैं, आईआईटी मंडी से हमारे बीच पधारे हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। यूं तो आपका नाम लक्ष्मीधर जी है लेकिन आप विद्यापति गणेश के पुत्र लगते हैं, क्योंकि बहुत ही विद्वता के धनी हैं। किन क्षेत्रों का वर्णन करूं और किन क्षेत्रों का नहीं, एआई और जो साथ ही साथ रोबोटिक्स है उसके तो आप विशेष रिसर्च स्कॉलर हैं, अध्यापन करते हैं, अनेक किताबें, रिसर्च पेपर, अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं, सोशल एक्टिविटीज में आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, साथ ही साथ भगवत गीता जो जीवन का एक सुंदर सार है उसे आप युवाओं तक पहुंचाने का, लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं कि कैसे धर्म यदि जीवन में आ जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। अनुरोध करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा जी आज के सुंदर विषय पर प्रकाश डालें।
सभी को नमस्कार। सभी ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार और उपस्थित स्पेशल गेस्ट और आप सभी जो इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए हैं, सभी को मैं विनम्र प्रणाम करता हूं। कुछ दिन पहले ब्रह्म कुमार श्रीकांत भाई आए थे IIT मंडी, मुझे बोले कि आप आओ। ये पहला बार मैं आया हूं। आज रात में पहुंचा 2 बजे, परंतु आपकी कैंपस को घूम चुका हूं और इसकी पवित्रता को महसूस किया हूं, इसलिए मैं आप सबको विनम्र नमन करता हूं। आत्मा स्वयं प्रकाश है, परमात्मा स्वयं प्रकाश है। न तद्भाषयते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। हम आत्मा हैं, परंतु उसकी ज्ञान हमारे पास है नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से हम जड़ संबंधी वस्तु से संग कर रहे हैं। सत्संग करना बहुत मुश्किल है, पर्टिकुलरली आज की समय में। विज्ञान बहुत तीव्र गति में आगे बढ़ रहा है। चांद में पहुंच रहे हैं, मंगल में पहुंच रहे हैं, परंतु मैं आत्मा हूं उसकी ज्ञान नहीं है। मैं एक साइंटिस्ट हूं, वैज्ञानिक हूं। तथ्य को आधार पर दुनिया को देखने के लिए कोशिश करता हूं। तथ्य क्या है? मेरा अनुभूति है। मगर आप जानते हो, ये जो अनुभूति है आपका है मेरा है, ये अनुभूति को हम विज्ञान से, विज्ञान की भाषा से समझा नहीं सकते हैं। आपके अंदर दिव्यानुभूति है और आपके अंदर वो अनुभूति है जो हमें नर्कगामी कराता है। दोनों अनुभूति हमारी पास है, मगर ये अनुभूति हमारी अंदर कैसे होती है इसकी ज्ञान कौन देगा? ये हमारी आधुनिक विज्ञान में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आधुनिक विज्ञान में यह कहा जाता है प्राइमरियल सूप से एलिमेंटल क्रिएशन होती है और वो एलिमेंटल क्रिएशन की कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करते हैं एक साथ एक ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होता है जहां पे कॉग्निशन क्रिएट होता है, अवेयरनेस आता है, जीवन आता है। ये कहने के बावजूद 300 साल से इनकी प्रयास के बाद भी अभी तक केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ इज ए अनसॉल्व प्रॉब्लम, इसको सॉल्व नहीं किया गया है। और फिर भी हम कहते हैं कि जब हम विज्ञान की बात करते हैं आध्यात्मिकता को त्याग दे दें, आध्यात्मिकता कोई जरूरत नहीं है, हम आध्यात्मिक हैं। ये भारतवर्ष उन ऋषियों की है, उन महात्माओं की है, जहां पे अपन अपना तपोबल से अपनी प्रत्यक्ष ज्ञान से अनेक प्रमाण दिए हैं कि ये संसार की ओरिजिन जो है वो कॉन्शियसनेस, चेतना, जड़ और चेतना के बीच में एक प्रभेद है। और अद्भुत बात है कि चेतना कहना एक बुरा बात था, एक गलती था 1990 पहले, 1990 में भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट ने पहला एक कॉन्फ्रेंस किया कॉन्शियसनेस बारे में सैन फ्रांसिस्को में, जहां पे टाउन चार्ल्सन जैसे नोबेल लॉरेट भी आए थे। और मैं देख रहा हूं अभी कॉन्शियसनेस हैज बिकम सेंट्रल पॉइंट विद इन साइंस, विज्ञान में, विज्ञान के केंद्र में आ चुका है। 2 साल पहले मैं IIT मंडी में स्टुअर्ट हैमरोक जी को बुलाया था और एक क्रेडिट कोर्स पढ़ाने के लिए कॉन्शियसनेस के बारे में, क्योंकि स्टुअर्ट हैमरोक और रोजर पेनरोज मिलकर एक थ्योरी दिए हैं कि जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिडक्शन और कार थ्योरी और क्रस्टेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन, यानी कि चेतना जो है हमारी ब्रेन में जो माइक्रोट्यूबल है, माइक्रोट्यूबल में क्वांटम इफेक्ट की वजह से प्रकाश होती है, प्रकट होती है। अभी IIT मंडी में मेरा एक PhD स्टूडेंट ने रिसर्च किया जहां पे हम एनेस्थीसिया देकर दिखाया कि माइक्रोट्यूबल एनेस्थीसिया के प्रभाव से मर जाता है, फिर भी प्लांट के अंदर कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसके अंदर न्यूक्लियस बरकरार है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन भी है, पर बहुत सारे ऑर्गेनल की समाप्ति हो गया, ऑटोफाजी के द्वारा सेल से निष्कासित हो गया, फिर भी जब एनेस्थीसिया की प्रभाव खत्म हो जाता है, यही ऑर्गेनल जो मर जाते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। अभी तक पता नहीं चलता है कैसे, हमारा एक शरीर है, उस शरीर में तीनों चीज होता है, कोशिकाओं की सृष्टि होती है, उनकी मेंटेनेंस होती है, और कुछ दिन की बात उनकी मृत्यु भी हो जाती है। हम जानते हैं हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में तीनों गुणों से शरीर परिचालित है, सत्व गुण से इसकी मेंटेनेंस होती है, रज गुण से इसके अंदर क्रिएशन सृष्टि होती है, और तम गुण से विनाश भी होती है, और अंदर और बाहर दोनों की साइंस भी वही है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुडात्मा कर्तम अहम इति मन्यते। प्रकृति द्वारा यह सृष्टि परिचालित है, प्रकृति तीनों गुणों से बना हुआ है। यह शरीर जो बाह्य शरीर है, जड़ शरीर जो जिसको हम कहते हैं स्थूल शरीर, जिसको विज्ञानी और वैज्ञानिक पाठ करते हैं, इसको देखते हैं रक्त मांस बोन इसकी रूप में देखते हैं, परंतु हमारी योगी लोग इसको देखें 5 तत्वों के आधार पर, भूमि आपो अनलो वायु खम, मगर उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है जिसको मन बुद्धि अहंकार के रूप में माना जाता है, और उसके ऊपर आत्मा, उसके ऊपर परमात्मा, यानी कि इस शरीर में कितनी वैरायटीज की ऊर्जा है, कॉग्निटिव ऊर्जा, प्योर कॉग्निशन। एक कॉग्निशन जो कि हमारा शरीर की अनुभूति कर सकता है, परंतु सभी शरीर की अनुभूति नहीं कर सकता है, परंतु परमात्मा कर सकता है, सुप्रीम कॉग्निशन, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कॉग्निशन, और उसके साथ कॉग्निटिव मैटर, मन और जड़ प्रकृति जब एंटैंगल्ड होते हैं उसको कहते हैं कॉग्निटिव मैटर। ये पोडियम जो है इसको मारने से भी कहता नहीं है, परंतु कोई अगर मुझे इस शरीर को थप्पड़ देता है वो रिएक्ट करता है, यानी कि अभी तक हमारे विज्ञान में ये समझा नहीं गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग मैटर एंड ऑर्डिनरी मैटर। और हम कहते हैं हम प्रगति किए हैं, नहीं किए हैं। प्रगति तब होती है जब विद्या और अविद्या, पराविद्या अपराविद्या, दोनों का बैलेंस प्रगति होती है। सबके अंदर एक भाव होनी चाहिए, मैं कौन हूं, और उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर, यानी कि हाउ मच आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ, दैट शुड इंस्पायर मी हाउ मच आई शुड बी इन्वॉल्व इन डिफेंडिंग दिस वंडरफुल नेचर दैट इज गिवन टू अस फॉर आवर सर्वाइवल। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये है इकोलॉजी, इकोलॉजी के ऊपर कॉन्फ्रेंस है। मैं एक अपना कहानी बताऊंगा। 2012 में एक गुरुकुल प्रतिष्ठा करने के लिए वृंदावन में हमने 100 एकड़ की जमीन लिया था। हमने 100 एकड़ की जमीन इसीलिए लिया था क्योंकि गुरुकुल की स्थापना होगा, गुरुकुल एक सेल्फ सफिशियंट कम्युनिटी होती है जहां पे बच्चे भी रहते हैं, टीचर्स भी रहते हैं, बाकी सब स्टाफ रहते हैं, गाय रहते हैं, और गाने खेती भी रहती है, और एक सेल्फ सफिशियंट, हम अपने को जाने, अपनी वातावरण को जाने, हारमोनी से जीना सीखे। तो जमीन मिलना मुश्किल था, 100 एकड़ की जमीन हमने खरीद लिया जहां मिला, और जैसे ही बारिश समय आया पता चला कि जमीन जो है पूरा नमकीन है। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, सॉइल कंजर्वेशनिस्ट सबको बुलाया गया, सबने बोला कुछ नहीं हो सकता है, आपने पैसा बर्बाद कर दिया। तो मैं मेरा एक साथी को भेजा सुभाष वालेकर जी के पास जो उस समय बीएचयू में थे, कैंप कर रहे थे, जैसे क्या हो, कैसे हमें हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार खेती करना चाहिए। और उन्होंने गए फिर सीख कर आए कि गाय के गोबर में, 1 किलो गाय जो है उसके गोबर में करीबन 10^4 × 10^5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवाणु होते हैं, और अगर आपको 10^20 उस ऑर्डर की माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए जो कि जमीन को, जमीन में जिए, जमीन को अपना घर बनाए, तो आप गोबर से नहीं कर सकते, इतना गोबर 10^15 किलो गोबर कहां से लाओगे। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया कि 1 किलो गोबर लो, उसमें गाय की मूत्र डालो, और उसके साथ कुछ जागरी, कुछ चने के पाउडर 200 लीटर पानी में डालने से 72 आवर्स में वो जो जीवाणु की संख्या था 10^4 × 10^5 वो संख्या बढ़कर हो जाता है ऑलमोस्ट 10^18 × 10^20 और 15 दिन में आप छिड़को जमीन पे। अब उस जमीन में 5000 बड़े बड़े पेड़ बन गए, उसमें बड़े बड़े नीम की वृक्ष है, आम की वृक्ष है, आमला की वृक्ष है, जामुन की वृक्ष है, सब। पहले तो कुछ नहीं था, पूरा बंजारा था, कुछ भी नहीं था, इतने बड़े बड़े वृक्ष, गेहूं, चावल सब कुछ उगाया जाता है, हर तरह की वेजिटेबल्स उगाया जाता है। और मैंने देखा है कैसे ये जमीन जो नमकीन था उसकी इवोल्यूशन हुआ, घास नहीं उग रहा था, सिर्फ कांटे थे, जैसे जीवाणु गए उसके साथ केचुआ आए, केचुआ के साथ मेढक आए, मेढक के साथ सांप आए, और जैसे हमने पॉन्ड्स बनाया पक्षी आए, पूरे इकोसिस्टम आया। पोलिनेशन के लिए हमने देखा बीज भी आए, मधुमक्खी। ये है प्रकृति की एस्थेटिक ब्यूटी। और इसके ऊपर हमने एक छोटा सा शोध किया। दो टुकड़ा जमीन लिया, एक टुकड़े में हमने ये जीवामृत नहीं डाला, दूसरे टुकड़े में जीवामृत डाला हर 15 दिन में। डालने के पहले दोनों टुकड़े की सॉइल को हम कैरेक्टराइज किया। वो जो सॉइल है उसको हमारी प्रोफेसर विनोद तारे आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर हैं, उनके लैब में हमने किया और देखा कि इसकी कंस्टिट्यूएंट सब सेम है क्योंकि एक साथ है दोनों प्लॉट। कितनी फास्फोरस, कितनी कैल्शियम, कितनी नाइट्रोजन, सब सेम है। और उसके बाद हमने उन्हें मेज क्रॉप डाला, मक्के की बीज। जहां पे बीज जीवामृत डाला गया वो पेड़ बहुत जल्दी उग गया, और जो जहां पे कुछ नहीं डाला गया वो पूरा नीचे रहा। 2 महीने के बाद मैं स्टूडेंट को बोला, जाओ अभी फिर सॉइल कैरेक्टराइजेशन करो। तो सॉइल जब मशीन में लाकर उसकी कंपोनेंट देखा गया, पहले जैसे था ऐसे ही अभी है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो फिर जिसमें जीवामृत डाला गया उसमें पेड़ इतना जल्दी कैसे बढ़ रहा है? तो एक ही कारण है क्योंकि इस जमीन पे जीवाणु की मात्रा है और उसमें जीवाणु नहीं है। सीख क्या मिला? तो आजकल आज तक जो पढ़ाया जा रहा था कि सॉइल यानी कि मिट्टी, मिट्टी क्या है ना, कितना फास्फोरस है, कितना सल्फर है, कितनी कैल्शियम है, कितनी ब्ला 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 ब्ला, मगर हमने देखा सही सॉइल जो है उसमें कितनी जीवाणु की मात्रा है, यानी कि लिविंग सॉइल। गुड सॉइल मीन्स लिविंग सॉइल। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की देन है। परंतु हम और कुछ करना जा रहे हैं और ये हमारे लिए जानबूझकर एक खुदकुशी जैसे कार्य है। तो मैं श्रीकांत भाई और इधर जितने सारे ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार इस कॉन्फ्रेंस को आयोजन किए हैं और ये बहुत सुंदर तत्वों के ऊपर, मैं चाहता हूं कि ये बहुत सक्सेसफुल हो। और ऐसे हम कह रहे हैं, नारा दे रहे हैं, विकसित भारत 2047। विकसित भारत तब हो जाएगा जब हम भारतीय ज्ञान प्रणाली में कृषि गोरख्या दोनों को अपनाएंगे, उसके साथ साथ आयुर्वेद के अनुसार हेल्थ केयर को अपनाएंगे, और तीसरा को भी हम संरक्षण करेंगे अपनी ज्ञान परंपरा के अनुसार, तब जाके विकसित भारत होगा। विकसित भारत को वेस्टर्न पद्धति से नहीं करनी चाहिए। वेस्टर्न पद्धति से जो सिविलाइजेशन बनी है हम देख चुके हैं, आयरलैंड कितना बार बैंकरप्ट हो चुका है, स्पेन बैंकरप्ट, ग्रीस बैंकरप्ट, और अभी यूके बैंकरप्सी की कगार पर खड़ा हुआ है। हमें ऐसे अनसस्टेनेबल सोसाइटी को बनाने के लिए प्रयास ही नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। नमस्ते, ओम शांति।
अपने रूट की ओर हमें चलना होगा। ये सुंदर संदेश आपने हमें दिया। सचमुच जड़ तक जब हम पहुंचेंगे, हमारी जो पुरातन संस्कृति रही है, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा रही है और जिनमें मूल्य बहुत ही गहराई से रहे हैं, उन मूल्यों के साथ जब हम जीना शुरू करेंगे तो सचमुच पुनः हम अपने समाज को, अपने विश्व को श्रेष्ठ और बेहतर बना पाएंगे। बहुत सुंदर रिसर्च आपने किए हैं और उन बातों को और भी गहनता से हम सुनते रहेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे अगले सभी वक्ताओं से कि समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे ताकि हम समय पर अपने सारे कार्यों को पूर्ण कर सकें। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय प्रभा दीदी जी, जो कि ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर हैं, हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगी। आदरणीय दीदी, 13 वर्ष की अल्पायु में ही इस विश्वविद्यालय से जुड़ गए और अपना संपूर्ण जीवन ही कुछ वर्ष के पश्चात ही इस ईश्वरीय कार्य अर्थ अर्पित कर दिया। आपने न केवल भरूच जो एक सुंदर स्थान है यहाँ गुजरात में, वहां रहते हुए सेवाएं की हैं, वहां के अन्य सेवा केंद्रों का संचालन करते हुए, बल्कि भारतवर्ष के अलग अलग स्थानों पर जाकर भी आपने अध्यात्म का सुंदर परचम फहराया है। तो अनुरोध करूंगा आदरणीय प्रभा दीदी से कि हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय दीदी,
ओम शांति, ओम शांति। सभी बोलिए ओम शांति। परमपिता, परमपिता परमात्मा की प्यारी प्यारी संतानों, विशेष आप सभी उस परमपिता परमात्मा जो जगत का पिता है, उस पिता परमात्मा के सानिध्य में आज आप सभी विशेष ज्ञान सरोवर के इस परिसर में अनेक प्रकार के रिसर्च करने के लिए और विशेष अपने जीवन को अनेक लाभों से लाभित करने के लिए आप सभी यहाँ पर पधारे हैं। ये ज्ञान सरोवर जो परिसर है, ये कहेंगी कि स्वयं परमपिता परमात्मा की प्रेरणा के द्वारा हमारी प्यारी दादी जी प्रकाशमणि जी के कर कमलों द्वारा और उनके संकल्प द्वारा इस परिसर की रचना की गई और यहाँ पर भिन्न भिन्न वर्गों की, पूरे ही विश्व की सभी आत्माएं इस परिसर में आती हैं और आकर के इतने अनुभव अपने जीवन के लिए लेके जाते हैं और अनुभवों को यहाँ शेयर भी करते हैं। तो मैं यही कहेंगी कि आप सभी भी जो विशेष अपना समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं, तो जरूर यहाँ से पूरा ही लाभान्वित होकर के ही जाएंगे। जैसे इस ज्ञान सरोवर का नाम है ज्ञान सरोवर, तो कहते हैं कि सरोवर में या सागर में डुबकी लगाने से क्या बन जाते, क्या मिलता है? जब सागर की गहराई में जाते हैं तो रतन मिलते हैं। तो इसी प्रकार ज्ञान सागर परमात्मा है जो ज्ञान से हम आत्माओं को भरपूर कर रहा है। आप सभी यहाँ ज्ञानी आत्माएं हैं और परमात्मा भी हमको जो और गहराई का ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान को लेकर के, ज्ञान से अपने को भरपूर करके, रत्नों से अपने को भरपूर करके यहाँ से जाएंगे। यही मेरी आप सबके प्रति आशा है, क्योंकि हम सुन रहे थे कि जीवन के अंदर वैल्यूज की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज मनुष्य के पास सब कुछ है लेकिन वैल्यू नहीं है। तो जब जीवन के अंदर वैल्यू आती है तभी जीवन सुंदर बनता है। जैसे अभी हम साइंस की बातें सुन रहे थे, तो जब साइंस और साइलेंस का बैलेंस होगा तभी साइंस भी कार्य कर सकती है। तो परमात्मा हम आत्माओं को यही बताते हैं कि कैसे साइंस और साइलेंस का बैलेंस करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए परमात्मा यहाँ हमें वैल्यूज सिखा रहे हैं कि कैसे अपने जीवन के अंदर हमें वैल्यूज धारण करनी है। जब जीवन के अंदर वैल्यू आएंगी तभी जीवन हमारा सुंदर बन सकता है। वैल्यूबुल जीवन का हम सभी वर्णन भी करते हैं। आज हम सभी जिन देवताओं की पूजा करते हैं तो उन देवताओं को हम देवता क्यों कहते हैं? कहते हैं कि वे देवता और मनुष्य दो बातें बताते हैं। तो देवताओं के अंदर वो दैवी गुण है और आज मनुष्यों के अंदर वो गुण नहीं है, इसलिए उनको मनुष्य कहा जाता है, और जिनके अंदर गुण है उनको देवता कहा जाता है। तो अपने जीवन के अंदर गुणों को, वैल्यू को धारण करके हम श्रेष्ठ और महान बन सकते हैं। जब व्यक्ति स्वयं महान बनेगा तो कार्य भी जरूर श्रेष्ठ और महान करेगा। तो पहले हमको अपने स्व को श्रेष्ठ बनाना है, तभी हम श्रेष्ठ कार्य भी कर सकेंगे। परमात्मा ने हमको एक स्लोगन दिया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जब स्व का परिवर्तन होगा तभी हम विश्व का भी परिवर्तन कर सकते हैं। विश्व के परिवर्तन के लिए हम अनेक बातें सोचते हैं, हम सुनते आए कि प्रकृति को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, व्यक्ति को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, तो उन सब के लिए हम सोचते हैं, लेकिन साथ साथ हमें स्व के लिए भी सोचना है। जब स्व का परिवर्तन होगा तभी विश्व का परिवर्तन भी हो सकेगा। तो स्व को श्रेष्ठ हम कैसे बनाएं, उसके लिए यहाँ पर आप सभी को जो 3 दिन के अंदर बताया जाएगा कि कैसे राजयोग के द्वारा हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बना सकते हैं। तो जीवन को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाने के लिए राजयोग के अभ्यास की आवश्यकता है, जो आप सबको यहाँ पर 3 दिन में वो राजयोग का अभ्यास कराया जाएगा। तो आप सभी विशेष इन 3 दिन के अंदर इस अभ्यास को करके अपने जीवन के लिए कुछ श्रेष्ठ भाथा भर करके यहाँ से जाए, यही मेरी आप सबके प्रति शुभ आशा है। ओम शांति।
सभी एक हाथ हिलाकर दीदी को ये आश्वासन दें, दीदी आपने जो कहा है, दीदी हाथ देखें, सभी बहुत प्यार से आपने जो कहा है जरूर उसे गहराई से अपने चिंतन में लाएंगे और परिवर्तन की शुरुआत हम स्वयं से करेंगे। और यहाँ जो रत्न हमें मिल रहे हैं उन रत्नों को हम अपने साथ अपने हृदय में संजो कर जाएंगे, है ना? ऐसा है, हम ऐसा करेंगे ना? बिल्कुल दीदी, सभी तैयार हैं और इसी भाव से ही सभी आए हैं कि अब एक सुंदर नई शुरुआत करेंगे। दीदी ने जो बातें कही उससे प्रेरित होकर अब एक नन्ही बालिका भी आ रही है कि दीदी ने इतनी अच्छी बातें कही, दीदी ने इतना अच्छा भाषण किया तो मैं भी कुछ कहूंगी। तो एक नन्ही बच्ची आपसे कुछ कहना चाहती है, तो भूमि को हम बहुत करतल ध्वनि से आमंत्रित करते हैं मंच पर। ये नन्ही बालिका 5 वर्ष की है, लेकिन जब अपनी माँ के गर्भ में थी तभी इसने 7 डेज का कोर्स अभिमन्यु की तरह ही कर लिया। 1 वर्ष की थी तब माउंट आबू आ गई, 2 वर्ष की थी तब इसने इस मंच से भाषण किया था। और इसके हृदय में बहुत सुंदर उद्गार है कि मैं भी अनुसंधानकर्ताओं को कुछ कहूँ। भूमि।
ओम शांति। मेरे शरीर का नाम भूमि है, शरीर की उम्र 5 साल है और मैं कहने वाली मैं आत्मा जो इस शरीर की मालिक हूँ। मैं शरीर को चलाती हूँ, उसकी आयु करीबन 5000 साल है। इस विश्वनाटक की आयु 5000 वर्ष है और मुझे विश्वास है कि मैंने इस नाटक में शुरू से अर्थात मृत्यु से देवी के रूप में पाठ बजाया है और अब ये मेला नाटक का अंतिम जन्म अर्थात लास्ट पार्ट में शनि लिपि स्थापन कर बजा रही हूँ। मैं सदा खुश रहती हूँ, आप भी सदा और सुख और शांति जाते हो ना। तो मैं आपको कुछ बातें सुनाती हूँ, आपको मेरे बोलने के बाद रिपीट करेंगे और लो दिन में एक दो बार बोलेंगे, तो आप भी सदा और सुखी और शांत लेंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं निडर हूँ, निश्चित हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरा शरीर एकदम निरोगी है, मैं सदा खुश हूँ, मेरे रिश्ते मजबूत और प्यारे हैं, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा जीवन बहुत सुंदर है, मेरी सफलता निश्चित है, मैं रोज मेडिटेशन करूंगी, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उनका दिल से शुक्रिया। मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि अब समय बहुत खराब आने वाला है, हमको इस मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आप अपना समय निकाल कर ब्रह्मा कुमारी के संतन में जाकर राजयोग मेडिटेशन को जरूर करें। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।
जोरदार तालियों से हम भूमिका बहुत 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 शुक्रिया करते हैं। हम सबको प्यार से निमंत्रण भी दिया कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर जरूर राजयोग का अभ्यास करेंगे, और कितने सुंदर सुंदर संकल्प दिए। किसको ये सारे संकल्प याद हो गए? हम जरूर इसे आज लिख लेंगे अपनी डायरी में। उस छोटी सी प्यारी गुड़िया ने हम सबको जीवन का सार दिया है, और विचारों से ही तो जीवन का निर्माण होता है, संकल्प से ही सृष्टि बनती है। यदि इन सुंदर संकल्पों को हम अपने जीवन में ले आएं तो हमारी सृष्टि सचमुच बहुत सुखद हो जाएगी। तो इसे जरूर नोट करें। एक बार पुनः भूमिका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और मैं अब आमंत्रित करता हूँ आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी को, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के, चीफ एडिटर और पब्लिशर हैं हिंदू सभा वार्ता न्यूज़पेपर के, हिंदू हिंदी और हिंदुस्तान के विकास के लिए आप समर्पित हैं। अनुरोध करूंगा आज के सुंदर विषय पर आप अपने विचार हमारे सम्मुख रखें।
ओम शांति। एक बार फिर से बोलिए ओम शांति। मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित आदरणीय प्रभात दीदी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित गण और सामने में बैठे हुए सभी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार देवियों एवं सज्जनों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो कि समय की आवश्यकता है उस पर आज का यह कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि इस पर आप सभी विद्वत जन यहां पर आए हैं, सभी साइंटिस्ट रिसर्चर्स और सभी विद्वान लोग दूर दूर से यहां पर पधारे हैं और सब लोग मिलकर बहुत ही अच्छा यहां पर ये चर्चा करेंगे और बहुत अच्छा निष्कर्ष निकलेगा और उससे जो हमारा मानव जीवन है वह निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आएगा। ऐसे हम लोग बहुत ही महान संस्कृति के लोग हैं, हमारी जो पुरानी संस्कृति थी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति या देवी देवता संस्कृति जो कि प्राचीन काल से देवी देवताओं के द्वारा यहां पर उस संस्कृति को और उस धर्म को दिया गया था, उसमें पारिस्थितिकी, सामाजिक सद्भाव और अध्यात्म के बीच में बहुत अच्छा संतुलन रहा है। आप देखते होंगे, मैं ये गांव में पैदा हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा 6th class तक गांव में हुई थी मेरी, तो मैंने बहुत ही निकट से जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसको मैंने देखा है कि किस तरह से पारिस्थितिकी, सामाजिक सद्भाव और अध्यात्म के बीच में संतुलन रहा है। मैं देखता था कि किस तरह से लोग जानवरों की, पक्षियों की और पेड़ पौधों की पूजा करते थे लोग। विभिन्न त्योहार आता था, जैसे नाग पंचमी है तो नाग देवता की पूजा की जाती थी, जब किसी का कोई जन्मदिन है तो वृक्षारोपण किया जाता था, जब देहावसान भी होता था बुजुर्गों का तो उसमें 13वीं के दिन पीपल में जल दिया जाता था, जितने भी वो उनके पड़ोसी होते थे, गांव के जो वो उनके होते थे संबंधी, जिनको हमारी भाषा में उधर बिहार में गोतिया कहते हैं, जो पूर्वज के परिवार के लोग हैं, तो वो सभी स्नान करके और घरे में जल लेकर के और पीपल में पानी देते थे। जब गोवर्धन पूजा का दिन आता था तो लोग पशुओं की पूजा करते थे, पशुओं को नहाते थे, उनको रंगते थे, उनका सिंग रंगा जाता था, तेल लगाते थे और उनकी पूजा करते थे। हम लोगों के यहां ये एक कहावत चलता था कि पीपल का पेड़ कोई नहीं उखाड़ेगा और पीपल के पेड़ को कोई काट नहीं सकता, जो काटेगा उसको पाप लगेगा, ऐसा माना जाता था। इसलिए अगर पेपर पीपल का छोटा भी पौधा होता था कहीं पर, अपने आप उग जाता था, जो कि वो हटाना जरूरी होता था, उसको भी लोग नहीं हटाते थे जल्दी, कुछ गिने चुने लोग होते थे उनके द्वारा ही उसको हटाया जाता था। तो प्रकृति और मनुष्य के बीच में किस तरह से एक आध्यात्मिक संबंध था उससे हमें अभी सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये विकास बहुत तेजी से हुआ है, विज्ञान भी बहुत तेजी से प्रगति किया है, तो वैज्ञानिक खोजों और अनुसंधान के कारण विज्ञान तो बहुत आगे चला गया, लेकिन पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिकता का जो आपस में संतुलन था विज्ञान के साथ वो छूटता चला गया। लोग अंतरिक्ष में चले गए, चांद पर चले गए, एटम बम बन गया, परंतु जो प्रकृति की पूजा, पशुओं की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, ये सब छूटता चला गया और उसी का परिणाम है कि आज मनुष्य का प्रकृति से संतुलन नहीं रहा और पर्यावरण में प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। शहरों में तो अब वो रहने लायक भी नहीं बचा। दिल्ली मुंबई ऐसे जो बड़े शहर हैं उसमें रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, इतना वहां पर प्रदूषण है। पेड़ पौधे काटे गए और उसके स्थान पर लगाए नहीं गए, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, गर्मी बढ़ रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रहे हैं, एयर कंडीशन जो चल रहा है उससे पर्यावरण का बहुत बड़ा असंतुलन हो रहा है। तो जो विज्ञान आगे बढ़ा जरूर, लेकिन विज्ञान ने प्रकृति से संतुलन का कोई रास्ता नहीं खोजा, और जिसकी आवश्यकता आज लग रही है। और मैं मानता हूं कि जो आज का यह कॉन्फ्रेंस है जो 3-4 दिन तक चलेगा, यह बहुत ही अच्छे विषय पर है और यह समय की आवश्यकता है। और इसमें जो मंथन होगा उससे फिर से एक बार हम लोग अपनी प्राचीन हिंदू संस्कृति की ओर लौटेंगे, उसका हम लोग अनुसरण करेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे, उस पर मंथन भी करेंगे। और हमारा पूरा विश्वास है कि अगर हम अपने सनातन जो संस्कृति है, जो रहन सहन लोगों का था प्राचीन काल में, उनका हम अनुसरण करेंगे और उसकी ओर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। आज यहाँ पर सभी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स यहाँ पर जुटे हैं जो कि विभिन्न विषयों पर शोध कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि उनका शोध इस विषय पर आधारित हो जिससे कि पारिस्थितिकी और सामाजिक सद्भाव और अध्यात्म तीनों के बीच में सामंजस्य हो। और मैं सोचता हूं कि अगर यहां पर जो चर्चा होगी उसको अगर आगे बढ़ाया जाए और बड़े बड़े जो संस्थान हैं, शिक्षा के केंद्र हैं और जो रिसर्च सेंटर है हमारे देश का, वहां तक ये पहुंचेगा तो निश्चित रूप से एक बार फिर शोध की जो दिशा होगी वो अलग होगा और मानवता के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत ही महान संगठन है। हम लोग भारतीय संस्कृति में देवियों की पूजा करते हैं, माताओं बहनों की पूजा करते हैं। हमारे ये त्योहार भी हमारे बीच में आता है कि हम बेटियों की पूजा करते हैं। तो बहुत ही अच्छी परंपरा यहाँ है कि इस संस्था में माताओं का, बहनों का और देवियों का नेतृत्व है और उनके नेतृत्व में बहुत ही संस्था बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है अध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए। और जो ये 20 प्रकल्प हैं इस संस्था के, जो एक ये भी ये प्रकल्प है स्पार्क, और भी विभिन्न पत्रकारिता है, समाज सेवा है, पर्यावरण है, महिला युवा ये विंग है, जुरिस्ट विंग है, ये सब ये 20 जो इनके प्रकल्प हैं, उन प्रकल्पों के माध्यम से लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा चर्चा हो रही है और लोगों में जागरूकता आ रहा है और देश बदल रहा है। जो हमारे सामने ये चित्र लगे हैं, सभी महान सभी देवियां हैं, इन दादियों के नेतृत्व में संस्था ने बहुत अच्छा कार्य किया। और मैं समझता हूं कि प्रत्येक वर्ष कई हजार लोग यहां पर विभिन्न प्रकल्पों के रूप में यहां पर जुटते हैं और बहुत ही अच्छी चर्चा करते हैं। और उससे एक बार फिर से हम वापस अपनी महान संस्कृति की ओर लौटेंगे, देवी देवता काल में लौटेंगे। और जो हमारी संस्कृति की अच्छाई थी उन सब को हम अपना करके भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाएंगे और भारत फिर से एक बार सोने की चिड़िया कहलाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं स्पार्क विंग के सभी पदाधिकारियों का, बहन अंबिका जी, और श्रीकांत जी आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा विषय यहाँ पर रखा है और एक से एक यहाँ पर विद्वान जुटे हैं जो इस पर प्रकृति विज्ञान और सामाजिक सद्भाव के बीच में संतुलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, शोध की दिशा को उस दिशा में ले जाएंगे जो हमें एक बार फिर से विश्व गुरु बनाएगा और पूरी दुनिया जैसे पहले भारत की ओर देखता था, अब आगे भी आप सबके प्रयास से पूरी दुनिया भारत की ओर देखेगा और ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रयासों से पूरी दुनिया भारत को फिर से एक बार विश्व गुरु के रूप में अपनाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। कई विद्वान यहां पर बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं, वो यहां पर अपने विचार व्यक्त करेंगे और हम सभी को लाभान्वित करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
भारत फिर भरपूर बनेगा और पुनः विश्व गुरु की जो उसकी एक सुंदर स्थान था उस स्थान को प्राप्त करके सारे विश्व को प्रकाश देगा और उसी के लिए हम सबका प्रयास, मातृभूमि का ऋण हम सबको चुकाना है अपने सुंदर बेहतरीन अनुसंधान से और प्रयास से, और इसकी शुरुआत हमें स्वयं से ही करनी है। मैं अनुरोध करूंगा अपने सभी मेहमानों से जो डेलीगेट्स आए हुए हैं वो सभी हॉल में ही उपस्थित रहेंगे और जो हॉल के बाहर है वो भी यहाँ आ जाएं, क्योंकि इस कार्यक्रम के पश्चात सभी को ईश्वरीय सौगात गिफ्ट्स यहाँ दी जाएंगे। तो इसीलिए सभी से अनुरोध रहेगा कि सभी हॉल में अवश्य आ जाएं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अपनी सुंदर दुआओं और शुभकामनाओं के साथ। हमारे साथ आदरणीय राजयोगी ब्रिजमोहन भाई जी जो सूक्ष्म में हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपनी शुभकामनाएं आप सभी अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रेषित किया है। आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं ब्रह्मा कुमारीज के, इस विद्यालय के वरिष्ठ भ्राता हैं और इस विद्यालय को शिखर पर पहुंचाने में आपका विशेष और अहम योगदान रहा है। तो उनका वीडियो के माध्यम से हम शुभकामनाएं प्राप्त करेंगे। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी,
मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि स्पार्क विंग की 18वीं नेशनल स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हो रहा है और वर्षों तक ये जो स्पार्क विंग है ये सारे देश के अंदर साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को, प्रोफेसर्स को, वाइस चांसलर्स को, जो भी इस स्पिरिचुअल रिसर्च में इंटरेस्टेड है उनको भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के द्वारा, भिन्न भिन्न कॉन्फ्रेंस के द्वारा इकट्ठे करके प्रोत्साहित करता रहा है कि हम भारतवासी, भारत जो एक स्पिरिचुअल देश है, कुछ ऐसी रिसर्च करके जीवन में उपयोगी आध्यात्मिकता को विश्व तक लाएं। तो ये जो इस वर्ष कॉन्फ्रेंस हो रही है, पिछले 17 कॉन्फ्रेंसों की जो सफलताएं प्राप्त हुई हैं, उसका एक दृश्य हमारी नजर में आ रहा है कि इसके अंदर 500 के करीब डेलीगेट्स जो बहुत रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, भाग लेते हैं, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे ये जानकर तो अति प्रसन्नता है कि कम से कम इनमें से 50 जो रिसर्चर्स हैं, हेड्स हैं, वो डायरेक्टर्स हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं के, रिसर्च संस्थाओं के, जिनमें IIT, DRDO, यूनिवर्सिटी इत्यादि हैं, उसमें वाइस चांसलर भी आ रहे हैं। तो और नहीं तो कम से कम 100 लगभग PhD स्कॉलर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, वैज्ञानिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं, मेडिकल डॉक्टर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 100 के करीब प्रोफेसर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 30-40 रिसर्च स्कॉलर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो इतने सारे जब इकट्ठे होकर के अपनी रिसर्च का सार बताएंगे तो एक दूसरे की रिसर्च को देख करके सभी इस फील्ड में अनरिचन होंगे और समाज को कुछ ऐसी अनमोल स्पिरिचुअल पॉइंट्स दे सकेंगे जिससे व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में एक जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, जो आध्यात्मिक डायमेंशन है, उसके द्वारा वो अपने जीवन को किस प्रकार से एक अलग ही मैजिकल तरीके से उसको उत्थान की ओर ले जा सकते हैं, ऐसा इससे रिजल्ट निकलेगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं इसमें आने वाले सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स को, स्पीकर्स को, इसके ऑर्गेनाइज करने वाले भाई बहनों को और जितना सपोर्ट स्टाफ है सबको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ इस कॉन्फ्रेंस के लिए। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपका आशीष हम सबके साथ हैं, आपकी शुभकामनाएं हम सबके साथ हैं। बड़ों की दुआएं सचमुच हमें बल भरती हैं, हमें राह दिखाती हैं, शक्ति देती हैं ताकि हम जो अच्छा संकल्प लें वो पूर्ण हो। आगे मैं अनुरोध कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा जी से, जो वाइस चांसलर हैं संदीप यूनिवर्सिटी नासिक से हमारे बीच पधारे हैं। आपका विशेष लक्ष्य रहता है कि न केवल विद्यार्थियों को बाहरी शिक्षा दी जाए लेकिन मूल्यों की भी शिक्षा दी जाए, क्वालिफिकेशन के साथ साथ उनके अंदर क्वालिटीज भी डेवलप हो, इस चीज का विशेष आप ध्यान रखते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा जी से और सभी से मेरा अनुरोध रहेगा हमारे आगे के वक्ताओं से कि संक्षेप में अपनी शुभकामनाएं हम सबके सम्मुख रखें। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा जी,
पर विराजमान सम्मानित गण, हमारे ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी भाई बहनों, माताओं, सभी को मेरा विशेष अभिनंदन। आज मुझे काफी गौरव हो रहा है आपके बीच में मुझे आने का मौका दिया। मैं इसके लिए ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आभारी हूं। आज मुझे याद आ रहा है विवेकानंद जी ने के कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि द साइन ऑफ लाइफ इज स्ट्रगल फॉर ग्रोथ, ए टीनी शिट ब्रिक्स ओपन द अर्थ टू ग्रो इन टू ए प्लांट, बट ग्रोथ अलोन डज नॉट मेक लाइफ ब्यूटिफुल। सो वॉट एज ए एकेडमिशियन वॉट वी आर डूइंग शेपिंग द ग्रोथ थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सिस्टमेटिक डिसिप्लिन इज ओनली द वे टू मेक लाइफ ब्यूटिफुल एंड विच इज लीड्स टू रियल पर्सनैलिटी। फ्रेंड्स, ह्यूमन पर्सनैलिटी हैव फोर डायमेंशन, मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल। व्हेन वी आर टेलिंग स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का तात्पर्य है अत्याधुनिकता। जीवन के जटिलताओं, चुनौतियों के बीच आध्यात्मिकता एक ऐसा प्रकाश है जो हमें आंतरिक शांति और उसके साथ हमारे संबंध को स्थापित करने की प्रक्रिया है। आप देखिए, आज हमारे देश में हजार से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। आज की डेट में करीब 54 हमारे जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, हमारी करीब 200-300 करीब होंगे, हमारे डीम्ड यूनिवर्सिटी, हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। लेकिन हम सब शोध के लिए अपने एकेडमिक्स में बहुत नए नए काम, नए नए एक बेंचमार्क स्थापित कर रहे हैं। फिर भी आज देखिए, मुझे गौरव और बहुत गर्व होता है कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय समाज, श्रेष्ठ समाज के लिए कार्यरत है। आज दोस्तों, आज की डेट में सबसे जरूरी है समाज को श्रेष्ठ करना। आज भी इतना हमारा विज्ञान आगे बढ़ते हुए भी हमारे समाज की मानसिकता को आप देखिए, अभी हाल में ही आप देखते हैं जब हम न्यूज खोलते हैं, वो बंगाल की हादसा, कभी कहीं और हादसा, ये क्या है? क्या सही में हमारा समाज विकसित है? ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो मैं बहुत दिल से मैं आभारी हूं ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, जो श्रेष्ठ समाज के लिए काम करते हैं। जो मैंने बात कही आध्यात्मिकता की, आध्यात्मिकता जो है वो केवल धार्मिक कृत्यों या पूजन पाठन से नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने और उनके साथ हमारे जीवन का संबंध स्थापित करने का एक प्रक्रिया है। आध्यात्मिकता का मतलब ही है कि मूलभूत पहलुओं की प्राप्ति। अगर आप देखेंगे कि मूलभूत जो पहलू है, जो विशेष है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आत्मज्ञान। अपने आप को, अपने जीवन को पहचानना, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानना। मैं अलका दीदी का आभारी हूं जब उन्होंने मेरी माता का नाम लेके सम्मानित किया। मैं आपसे कह दूं, अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि इस दुनिया में कुछ भी रियल नहीं है एक्सेप्ट मदर। सो मदर से ज्यादा रियल कुछ नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे जीवन में मुझे पुश करने वाला कोई था नहीं। मेरी कठिन परिश्रम, मां का आशीर्वाद ही मेरे प्रोफेशनल गोल को अचीव करवाया। मैं रात रात भर पढ़ता था, मेरी माता रात रात भर जगती थी। आज वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमेशा हमें आशीर्वाद देती हैं। तो माता का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं अपने जीवन से मैंने 2-3 चीज सीखा है कि जब भी, जैसे बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन, एंटायर वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन, जब आप कुछ बोलते हैं और जब आप प्रतिक्रिया देते हैं, उस समय आपको 3 बातों का ध्यान देना चाहिए। एक संयम, दूसरा सम्मान और तीसरा सभ्यता। दूसरा मैंने जीवन में देखा कि जीवन में सबसे जरूरी है हिम्मत, आत्मविश्वास। अगर आप में आत्मविश्वास रहेगा, हिम्मत रहेगा, तो आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और जीवन के लक्ष्य को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप अध्यात्म को अपना जरिया बनाएंगे। वो कहा गया है ना, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु के नियम को बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त के मान को न टलते देखा, जिसके जिसके केवल दृष्टि मार से सबन विश्व को पलते देखा, उसको मैंने गोकुल के माखन पर कई बार मचलते देखा। तो प्रभु को याद करना, प्रभु के आपके जीवन का लक्ष्य को समझना, अपने आंतरिक ज्ञान को समझना, अपने आप को समझना, ये सबसे जरूरी है। कहते हैं ना कि लाइफ इज अ लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम। व्हेन वी सेड दैट लाइफ इज अ लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम, इट मींस इट इज गोइंग टू बी एन एंड। तो आइए हम सब मिलकर ये आज के इतने अच्छे माहौल में, इतने अच्छे सम्मेलन में हम एक दूसरे से कंधा मिलाकर इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ खड़े होकर श्रेष्ठ समाज की रचना करें। हम बहुत आगे जा चुके हैं, फिर भी समाज को सशक्त करना बहुत जरूरी है। और मुझे गर्व है कि हमारे देश में ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां हमारी बहनें और माताएं इस कार्य को कर रही हैं। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं एज ए वाइस चांसलर, मैं ये चाहूंगा कि मैं हमारा जो विश्वविद्यालय है संदीप यूनिवर्सिटी आपके साथ जुड़ा रहे। दोस्तों, हमारा जो संदीप यूनिवर्सिटी है ये महाराष्ट्र का नंबर वन डीम्ड यूनिवर्सिटी है। आज 400 एकड़ जमीन पर हमारा जो संदीप यूनिवर्सिटी है, आज जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, वट एवर द नीड ऑफ द आवर, वी हैव दोज कोर्सेज एंड वी हैव ए ग्रेट टीम एंड आई एम सक्सीडेड टू एस्टेब्लिश ए इनोवेटिव रिसर्च सेंटर। ज्ञान के लिए एकेडमिक्स और रिसर्च का होना बहुत जरूरी है। मैं आज भी शोध से जुड़ा हुआ हूं, मैंने शोध में बहुत कार्य किया है। मैंने 1997 में, क्या होता है कि जब भी हम अपने प्रोफेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कभी कभी वो फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, मार्केटिंग फोरकास्टिंग ये करते हैं, तो मैंने लिस्ट स्क्वायर मेथड को मॉडिफाई करके ये फोरकास्टिंग मैंने काफी उसमें अच्छा रेग्रेशन मेथड और स्टैटिस्टिक्स मेथड से उसको मैंने उसको एक्यूरेसी बनाने में सफल हुआ था। और दिन पे दिन हमारी बहुत अच्छी टीम है, हम लोग मिलकर शोध के लिए काम करते हैं। और अत्याधुनिकता से जुड़ने के लिए और उस पर कार्य करने के लिए हम जरूर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संबंध स्थापित करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू,
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा जी। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय सरोज बहन जी से कि जिस परम सत्ता की हम चर्चा कर रहे हैं, जिनसे जुड़ने की बात हो रही है और जहां से हमने सत्यम शिवम सुंदरम से शुरुआत की थी, वो सत्य कौन है, शिव कौन है, कैसे हम उनसे जुड़े, क्योंकि जब तक उनसे ना जुड़े तब तक अंतर मन प्रकाशित नहीं होता। आदरणीय सरोज दीदी स्पार्क दिल्ली और दिल्ली NCR की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और वहां द्वारका, वसंत कुंज और संबंधित सेवा केंद्रों का संचालन कर रही हैं। आदरणीय सरोज दीदी।
ओम शांति। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की अति प्रिय संतान, सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ, अनुसंधानकर्ता, लर्नेड स्कॉलर्स, सबको हमारी शुभकामनाएं। आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, बहुत सुंदर तरीके से मैं भी एकाग्र होके सुन रही थी और अपने अंदर ग्रहण करती जा रही थी। अब कुछ सोचने का नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि आज के इस विषय को सार्थक बनाने के लिए, इकोलॉजिकल एंड सोशल हार्मनी जिस विषय पर कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसमें हमें मेडिटेशन महती भूमिका निभाता है। राजयोग मेडिटेशन जो हमें अवेयरनेस देता है स्पिरिचुअल वैल्यूज की, एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज। तो आइए हम सभी चलते हैं इस अनोखी यात्रा पर, अनुभव करें। अपने मूल स्वरूप को थोड़ी देर के लिए अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाते हुए स्वयं पर एकाग्र कर लें। चिंतन करें, मैं कौन हूं, बुद्धि रूपी नेत्र से देखने का प्रयास करें। इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर की मालिक, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मस्तक के बीच विजुअलाइज करें यह दिव्य सितारा चमक रहा है। अ पॉइंट ऑफ लाइट, स्पार्कलिंग स्टार, रिजाइडिंग इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। महसूस करें अपने वास्तविक स्वरूप को, मैं आत्मा, चमकता हुआ दिव्य सितारा। मेरा असली स्वरूप शांत है, मैं आत्मा अपने हैं मूल स्वरूप में, शांत स्वरूप हूं। जिस शांति को हम इधर उधर ढूंढ रहे थे, शांति तो मुझ आत्मा का धर्म है, मेरी निजी संपत्ति है, मेरी असली धरोहर है। मेरी ओरिजिनल नेचर है, मेरा संस्कार है, बस मुझे अपने स्वरूप में स्थित होना है, महसूस करें मैं आत्मा, सूर्य की भांति एक स्थान पर रहकर समस्त विश्व तक शांति के प्रकंपन फैला रही हूं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से दूर अपने असली धाम की यात्रा पर जा रही हूं। बुद्धि रूपी नेत्र पर, बुद्धि के वाहन पर बैठकर सूर्य चांद से पार, सूक्ष्म लोक से पार, पांच तत्वों के प्रभाव से परे ब्रह्म है तत्व, जहां लाल सुनहरी रंग का प्रकाश है, यही तो मेरा धाम है। मैं आत्मा अपने असली धाम शांति धाम में पहुंच गई हूं। शांति के इस लोक में असंख्य आत्माएं सितारे की तरह चमक रही हैं। मेरे पिता परमात्मा जो शांति के सागर हैं, परम धाम के निवासी हैं, मैं आत्मा चमकता सितारा उस परम ज्ञान सूर्य के सानिध्य में शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है। उनके सन्मुख बैठकर अपने दिव्य नेत्र से सत्यम शिवम सुंदरम को देखिए। शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता की शक्तिशाली किरणें सर्वशक्तिवान से स्वयं में प्रवाहित होता अनुभव करें। मैं आत्मा स्वयं को इन मूल गुणों से भरपूर अनुभव कर रही हूं। मुझ में आत्मविश्वास जागृत हुआ कि अब मैं शांति दूत बनकर पुनः इस शांति धाम से इस साकार सृष्टि की ओर पहुंच रही हूं। महसूस करें सृष्टि के ग्लोब पर बैठकर शांति दूत बनकर चहूर शांति प्रेम पवित्रता के प्रकंपन प्रदान कर रही हूं। स्वयं की हारमोनी परिवार में हारमोनी लाएगी, परिवार से समाज में विश्व में परिवर्तन आएगा, संपूर्ण पर्यावरण मानव जाति पेड़ पौधे पशु पक्षी सब सुंदर राम राज्य की तरह हारमोनी में रहकर सुंदर सरस
सुखद जीवन जिएंगे। हम सबकी कल्पना सर्वशक्तिवान का शुभ आशीष पूर्ण करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ महसूस करें, मैं आत्मा वापस भृकुटी में इस हार्मनी हॉल में कार्य के लिए बैठ गई हूं। ओम शांति शांति शांति।
योग की ये सुंदर अनुभूति आप कल प्रातः भी करेंगे और प्रतिदिन प्रातः काल 4 से 4:45 बजे तक योग का सुंदर सत्र रखा गया है, उसे आप जरूर अटेंड करें ताकि गहराई से इस सुंदर स्थिति का अनुभव कर सकें। वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है, इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा अपने आगे के वक्ताओं से कि बहुत संक्षेप में अपनी बात रखेंगे, क्योंकि इसके पश्चात आप सभी को ईश्वरीय सौगात भी मिलनी है और सभी को भोजन भी करना है। तो भोजन भी सभी को जरूर याद आ रहा होगा कि अब हमारे पेट में थोड़ी चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन हाँ ये ज्ञान की सुंदर बातें। बस हम अंतिम पड़ाव की ओर हैं। मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर शेखर सिन्हा जी से, जो मेडिकल डायरेक्टर हैं जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हिसार से हमारे बीच पधारे हैं, संक्षेप में अपनी शुभकामना हम सबके बीच रखेंगे डॉक्टर शेखर सिन्हा जी।
गेस्ट ऑन द स्टेज and guests of honor, the participants of this assembly. Today I am here to present a aspect of the, you can say, research, that is concept to creation or knowledge to application. We have tried to bring about value-based research in our hospital, where we did effect of Raj Yoga-based distant healing on clinical outcomes in pediatric patients. After getting the ethical approval from the Ethics Committee, we began our study in November 2023, where we tried to bring about an amalgam of meditation and medicine at Jindal Institute of Medical Research, Hisar. The triggering event was July 2022, at the fag end of the pandemic of COVID-19. The triggering event was that a child was getting treatment for a disease in pediatric ICU. The disease is called GBS or Guillain-Barré syndrome. It is a very debilitating disease where all the limbs or the motor power is paralyzed, even you cannot breathe, but your mind is active. That time our chairperson, Srimati Deepika Jindalji, who was taking round, interacted with the caregivers, that is doctor and nurses, the child and the mother of the child. She was supposed to present today, but she could not come. Then the mother sitting might be anxious, might be having negative feeling or having indefinite thought. This came to her mind. Can meditation help? And our chairperson was very convinced. She had a belief that meditation will help. And we also pondered that the best touching moment to induce meditation was such moments. It can be a trigger point to induce meditation. How? That we will do in the study. And effect of meditation during this phase of disappointment was studied. So a brainstorming was done, and on 12/8/22, we tried to form a study so that there was creation of hope, reduction of disappointment, strength to face the adversity, and increased positive thinking in such dark moments of life. And effect of meditation on doctors, nurses, administrative staff, nursing students, patients and patients' relatives. The problem or the focus point was how to quantify effects of meditation or map qualitative improvements. Duration of the project was kept 1 year, which we have extended. The screening populations were obviously pediatric patients. Sample size was 100. Who will teach meditation? It was done by the BK experts, Brahmakumari expert at Hisar itself. Who will measure the impact of meditation and how will measure the impact of meditation were the part of the research design. So we did a pilot study in December 2022, where we introduced a complementary therapy of distant healing to modern medicine, so that there was connection between child and the caregiver, and the sick children, or mainly the caregivers, the mothers, were taught how to think in a positive way, give good wishes to the patients, and the outcome which we measured were length of the study, patient-related outcome measures, and whether the symptoms were less or not, after the approval of the ethics committee. So how we do it? From November 2023, we studied the effect of Raj Yoga-based distant healing on hospital-based clinical outcome among pediatric patients. Recruitment of the patient is done by the treating doctor. Doctor explains the patient the role of meditation, prayer, and Raj Yoga by distant healers. Informed consent and envelope for randomized are selected with a photo of the child. Photo of intervention group is sent to Sri B.K. Srikant Bhai, who coordinates the distant sakas from this center. Then we hand over the patient to the research coordinator for collection of data on assessment of the care givers in the collection data forms. Treating doctor will introduce the research coordinator to the patient. Detail of the data entry documentation to be clarified by a doctor. A subjective scale is taken at the time of admission and time of discharge. Primary objective is at the time of discharge is to note the duration of the study. Secondary points were anxiety, depression, and hope at the end of 7 days of Sakha Seva. Visit by BK sisters who explain the role of distant prayers and tips the parents and relatives what to think about the child and how to think positive about the child. And excluded envelopes are added back to the pool so as to continue the study. What we do 5 mini sessions per day at gyms at our hospital. Caregivers, mainly the doctor, nurses and patient relative, they do 5 mini sessions of prayers. 2 main sessions of Sakha Seva is done by the Spark Wing of the BK, headed by Srikant Bhai from this center. Then we had a review meeting and on July 2024, and we have already done 30 cases. 16 were cases, 14 were controls. The patients who have expired, who have excluded, we are not going to tell you because study is still in the progress. We have not presented the result. That goes under ethics committee. There is no change in the commentary. We have recorded the experience of parents and the caregivers. Qualitative is part. Parents, mainly mothers, have been taught how to do sakas. New or serial pictures of the subject is uploaded serially. Follow-up of the discharge patient is being done, and a small clipping of our nursery is sent to everybody. Outcome of the study till now in 30 cases is that there is a positive change in anxiety and depression levels of the patients, patient, parents and the caregiver. A positive deal in the staff and doctors who are involved in 24-hour in 6 children. As Seva is incomplete without Gyan, daily Murli class is held at the hospital premises. Traffic control is being followed and needs more penetration among the all hospital staffs. Number of people, doctors, nurses, patients, relatives visiting the Baba's room in our hospital, it has also increased. And we are very hopeful of a positive impact on the children. So thank you. I have paucity of time. I could discuss more on this. And I especially like to thank Ranjim Bhai, if he is here, who helped us in the formation of this study, and Mr. Sushil Chandraji. He was also very active during formulation of the study. So if you have any doubt, you can ask, but it is a very positive study.
Thank you very much, sir. Dr. Shekhar Sinha ji, humse vidai bhi lenge, to main didi se anurodh karunga ki unhein shawl aur smriti chinh de karke sammanit karein. Aapki flight hai Ahmedabad se, to anurodh hai Dr. Shekhar Sinha ji se ki didi se shawl aur saath hi smriti chinh लेकर के फिर यहाँ से विदाई लेंगे. और साथ ही मैं अनुरोध करता हूँ अब भ्राता रवीन व्यास जी से, जो हमारे बीच हैं, हमारे बहुत ही ऐसे वक्ता जिन्हें सभी बहुत प्यार से सुनना पसंद करते हैं, मैं उन्हें अनुरोध करूँगा कि वो अपनी शुभकामनाएं इस कॉन्फ्रेंस के निमित्त दीदी से. मेरा अनुरोध रहेगा कि हमारे अन्य अतिथियों को भी शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान करें. साथ ही भ्राता रवीन व्यास जी अपनी शुभकामनाएं हमारे बीच रखेंगे।
आप और भोजन के बीच में मैं खड़ा हूं। ओम शांति, ओम शांति। जब दीदी सरोज ने हमें मेडिटेशन करवाया तो जिस शांति का अनुभव मुझे हुआ, मुझे मालूम है कि आप सबको ये हुआ है। और आज मैं एक ऐसे विषय पे बोलना चाहता हूं जो हम सबके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, वो इसका दूसरा पहलू है, इकोलॉजिकल नहीं लेकिन सोशल हार्मनी। महदंश वक्ताओं ने इकोलॉजी के बारे में बोला है। मैं इस विषय को इसलिए इस समय करना चाहता हूं कि मुझे आते वक्त मेरे साथ बहन जो थी हमारे साथ टैक्सी में, उन्होंने बताया कि ब्रह्मा कुमारी के तकरीबन 5000 केंद्र है, तो इस केंद्र से सोशल हार्मनी पे काफी कुछ हो सकता है। दीदी ने बताया कि स्व से विश्व शांति तक अगर हमें जाना है, स्व शांति तो हमने अनुभव की थोड़ी 5 मिनट में और राजयोग से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर विश्व शांति की ओर जाना है तो हमें राष्ट्र के मार्ग से जाना होगा। सीधे तो विश्व नहीं जा सकते, तो दिक्कत यह है कि राष्ट्र हमारा सोशल हार्मनी में शांति होने की जगह षडरिपु से परेशान है। आप में से कितने लोगों को षडरिपु के बारे में मालूम है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये हमारी अंदर की आंतरिक शांति को डिस्टर्ब करते हैं। तो हमें ये सिखाया जाता है कि आंतरिक शांति हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को काबू में रख के लाना चाहिए। आज हमारे देश में ऐसे ही कुछ 6 दुश्मन, हमारे आंतरिक 6 दुश्मन है, ऐसे ही हमारे भारतीय सभ्यता की, भारतीय सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करते हुए 6 रिपु है। मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मेरा विषय नेशनल सिक्योरिटी है, डिफेंस में काम करता, एप्लीकेशन में काम करता, और मुझे आनंद हुआ क्या क्या प्रवृत्तियां हो रही है। थर्ड इज डिजिटलाइज, जो डेटा हम अपने फोन से भेजते हैं, जो CCTV कैमराज हमारे हैं, वो सब डेटा कोई और लोग यूज कर रहा है। थर्ड इज वी ऑल नो फंडामेंटलिस्ट, फिफ्थ आर एवेंजलिस्ट, सिक्स्थ आर एक्सट्रीमिज्म। मैं उसके उदाहरण में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हमारे यहां जितने शोधकर्ता आए हुए हैं, जो 5000 अपने सेंटर्स है, क्या हम राजयोग के माध्यम से ये देश के षडरिपु को एड्रेस कर सकेंगे? अगर ये होता है तो ब्रह्मा कुमारी इसका ये अनुसंधान देश के लिए सबसे उपयोगी रहेगा। और राजयोग और आध्यात्म ही इसको सॉल्व कर पाएंगे, उसको विज्ञान नहीं कर पाएगा। मैं मेरे सब वैज्ञानिक साथियों, जैसे यहाँ DRDO से साइंटिस्ट है, पाल साहब है, डॉक्टर साहब है, जितने प्रेजेंटेशन करके गए, ये सोशल विषय ऐसा है कि जो अध्यात्म से ही एड्रेस हो सकेगा। मैं आखिरी बंदा हूं बोलने के आपके भोजन और विष में, लेकिन ये 6 षडरिपु जो हमारे आंतरिक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ऐसे ये जो 6 मैंने बताए, जैसे फॉरेन डीप स्टेट मद के कारण है, नेबरहुड एजेंसीज क्रोध के कारण है, डिजिटलाइज अपने मत्सर के कारण है, फंडामेंटलिज्म अपने काम से, एवेंजलिस्ट अपने लोभ से हैं, और एक्सट्रीमिज्म अपने मोह से हैं। इनसे हम कैसे लड़े, ये विषय अगर आप लेना ले तो मुझे एज ए राष्ट्र योगी आनंद होगा। प्रणाम।
भ्राता रवीन्द्र व्यास जी, मिशन एडवाइजर, डिफेंस टेक्नोलॉजी, असेंबलीज अहमदाबाद से, और डिफेंस के लिए आपका बहुत सुंदर विजन है कि सारी जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो हमारे डिफेंस में यूज हो, और उसके लिए ही उन्होंने ये सुंदर बात हमारे बीच रखी है। और जरूर राष्ट्र सुरक्षित तो हम सब सुरक्षित हैं, तो इस पर जरूर सभी मिलकर के प्रयास करेंगे और इस पर विचार भी गहनता से करेंगे, क्योंकि राष्ट्र को श्रेष्ठता और शिखर की ओर ले चलना हम सबका दायित्व। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय संजय भाई जी से कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए हम सबके बीच पधारें। आप हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर हैं स्पार्क विंग के और 1990 से आप विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और 93 से समर्पित रूप से अपनी सुंदर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए आदरणीय संजय भाई जी से निवेदन करूंगा।
ओम शांति। आप लोग काफी देर से काफी धैर्यता से सुन रहे हैं, तो मुझे लगा कि सबसे पहले आपको ही धन्यवाद दिया जाए। आप सब अपने लिए एक बार ताली बजाएं। आपने रात्रि 9 बजे तक अपने भूख को कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो सचमुच आप सब साधुवाद के पात्र हैं। स्पार्क इसकी सेवाएं बहुत विस्तृत है। हर वर्ष सर कॉन्फ्रेंस के नाम से ये प्रभाग बहुत सारी सेवाएं करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये सम्मेलनों का आयोजन करता है। स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चर्स, रिसर्च करने वालों में जब तक मूल्य आएंगे नहीं, वो मूल्य जो भी रिसर्च होंगे वो सुखदायी होंगे नहीं, तो रिसर्चर्स को ही मूल्यवान बनाया जाए, मूल्यनिष्ठ बनाया जाए, ये इसका ध्येय रहता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि विज्ञान अध्यात्म मिल जाए तो ही ये संसार बेहतर बन सकता है, और यही लक्ष्य लेकर के ये विंग अपनी सेवाएं करता है। इस वर्ष भी उसने इस सम्मेलन का आयोजन किया है जिसका बहुत सुंदर थीम है वैल्यू बेस्ड रिसर्च फॉर इकोलॉजिकल एंड सोशल हार्मनी। प्रकृति और पुरुष के बीच में सद्भाव तभी हो सकता है जब बीच में अध्यात्म आ जाता है। इस विषय पर अगले 3 दिनों तक आप बहुत कुछ सुनेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, योग की अनुभूति भी करेंगे, और हमारा अनुरोध रहेगा कि जो कुछ आप यहाँ से ले करके जाएंगे, बटोर करके जाएंगे, उसे खुद के जीवन में भी जरूर अप्लाई करेंगे और दूसरों का भी जीवन उसे सुखदायी बनाएंगे। अगले 3 दिनों के सम्मेलन का जो पृष्ठभूमि है उसकी एक रूपरेखा आज के इस उद्घाटन सत्र में तैयार की गई, और हमारे मंचासीन जो भी हमारे भारत के प्रसिद्ध और प्रबुद्ध जो स्पीकर्स हैं, गणमान्य लोग हैं, उन्होंने एक अच्छी पृष्ठभूमि तैयार करके हम सबको दी है ताकि अगले 3 दिनों तक हम सब अच्छी तरह से उस ज्ञान को ग्रहण करें। और न सिर्फ अपने भारत देश को बहुत अच्छा लग रहा था, हमारी ये जो रवीन व्यास जी ने बात कही कि संसार तो बाद में अच्छा बनेगा, पहले देश को अच्छा बनाना है, तो हम जो कुछ भी यहाँ सीखेंगे उसको अप्लाई करेंगे और उसकी पृष्ठभूमि जो हमारे ये गणमान्य व्यक्तियों ने बनाई है उसके लिए हम बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं। खास करके हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी, आपका हम तहे दिल से आभारी हैं। आप यहाँ आए, आपने समय निकाला, आपने इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे जो 4 गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, श्री लक्ष्मीधर बेहरा जी, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा जी, शेखर सिन्हा जी और रवीन व्यास जी, आपको सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि आपके पास बहुत कुछ है लेकिन समय कम है इसलिए हम सुन नहीं पाए हैं, परंतु आगे के सत्रों में जरूर हम आपको सुनेंगे। हम आप चारों का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आप सब आए और आपने अपने ज्ञान से हम सबको प्रकाशित करने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमारी जो प्रभा दीदी जी हैं जिन्हें आप सामने देख रहे हैं, जो इस कॉम्प्लेक्स की डायरेक्टर हैं, उनके ही निमंत्रण पर आप सब यहाँ आए हैं और उन्होंने ही आपके रहने का खाने का सुंदर अनुभव की व्यवस्था की है। तो हम अपने आदरणीय प्रभा दीदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थोड़ा जोर से ताली बजाएं आप लोग, ऐसा लगता है कि आप लोग सुन सुन के थक तो नहीं गए हैं, अभी और भी सुनना बाकी है। तो आप लोग अपना उमंग उत्साह बरकरार रखिए, अपने एनर्जी लेवल को नीचे मत जाने दीजिए। प्रभा दीदी जी के साथ साथ हमारे बीच अंबिका दीदी जी हैं, जो कि स्पार्क विंग की चेयरपर्सन हैं, और आपका हमेशा ही ये बहुत अंदर में ख्याल रहता है, एक मदरली फीलिंग रहती है कि कैसे सबको सुख शांति मिले। इस प्रभाग के द्वारा जीवन में, लोगों के जीवन में सुख शांति कैसे लाया जाए, कैसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करें ताकि लोग अच्छी बातों को सीखे और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हम आदरणीय अंबिका दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ में हमारी सरोज दीदी जी, अलका दीदी जी, ये इनके दो, ये भी हमारी बहुत वरिष्ठ बहनें हैं जो हमेशा इनके सहयोग में रहती हैं। अलका दीदी जी ने हम सबका स्वागत किया और सरोज दीदी ने बहुत सुंदर एक अंतर जगत की हम सबको यात्रा कराई, और ऐसी यात्राएं आगे भी आप और भी करते रहेंगे और इस चीज को जरूर अपने जीवन में आप सजो करके ले जाएंगे। तो अंबिका दीदी जी के साथ साथ इन दो बहनों का भी हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कोई भी प्लान हमारे जो बड़े हैं बनाते हैं, उसको मूर्त रूप देने का काम जो ग्राउंड लेवल पर करते हैं वो कुछ अन्य लोग होते हैं। बड़ों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो एकदम छोटी छोटी चीजों को ऑर्गेनाइज करें और मैनेज करें। इस प्रभाग में हमारे श्रीकांत भाई जी, जो भी हमारी आशाएं और अपेक्षाएं हैं अंबिका दीदी जी की, उसको मूर्त रूप देने का सारा श्रेय मैं समझता हूं श्रीकांत भाई जी को जाता है। ग्राउंड लेवल पर जितना भी मैनेजमेंट है वो आप ही संभालते हैं, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रारंभ में ही इस उद्घाटन सत्र के प्रारंभ में हमारे बीच साई राम एस अय्यर जी हैं, जिन्होंने एक बहुत सुंदर गीत गाया। ये भारत के एक वेल नोन पर्सनालिटी हैं। आप हमारे पास आए, आपने एक इतना सुंदर भजन हम सबको सुनाया, हम आपका भी परमात्मा के घर में तहे दिल से स्वागत करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को तो आपने देखा ही, उन्होंने कितना हमें खुशी प्रदान किया। तीन कुमारियां, ओवी, उर्मी और उर्वी, साथ में भूमि छोटी बच्ची जिसने बहुत सुंदर स्पीच प्रस्तुत किया, हम उन बच्चियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही सुंदर मंच संचालन के लिए हमारे रूपेश भाई जी, ये भी पीस ऑफ माइंड के एक वेल नोन टीवी फिगर हैं, आप अक्सर इनको टेलीविजन पर देखते रहते होंगे, बहुत ही मधुर भाषी और बहुत ही हसमुख, बहुत ही सुंदर मंच संचालन आपने किया, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अंत में जिसकी कृपा और अनुकंपा से आप सब यहाँ आए हैं, परमात्मा शिव, जिसकी याद से ही जीवन में मूल्य आते हैं, हम उसका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद, अगर कोई रह गया हो तो माफी के साथ उसका भी धन्यवाद। ओम शांति।
संजय भाई जी का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हम सबका धन्यवाद करने के लिए। मधुरवाणी ग्रुप ने भी बहुत सुंदर गीत गा के सबका स्वागत किया था, उनका भी दिल से शुक्रिया है। और सभी जो भी प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका भी हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया है। अब मैं बहनों से अनुरोध करूंगा, हमारे मंच पर जो आसीन हमारे मेहमान हैं, उन सबको स्मृति चिन्ह और शॉल देकर के उनका सम्मान करेंगे। और आप सबको भी यहाँ इस मंच से ही ईश्वरीय सौगात दी जाने वाली है, तो जो भी हॉल के बाहर हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी सभा में आ जाएं और यहाँ से ईश्वरीय सौगात लेकर के जाएंगे। तो हमारी दीदी प्रभा दीदी जी, सम्मानित कर रही हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा जी को। हम तालियों की गड़गड़ाहट से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं भ्राता डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर अपनी बातें, अपनी ज्ञानवर्धक बातें हम सबके सम्मुख रखी हैं।